ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। कल का जन्माष्टमी उत्सव बहुत सुंदर रहा। मुझे मालूम नहीं था कि आदिलाबाद में इतना बड़े मात्रा में होता है जन्माष्टमी। जब मुझे बुला रहे थे मैंने सोचा कि उधर पुराना मंदिर जो है उधर ही बैठकर कुछ कथा होगा सुना, हमने सोचा ऐसे। लेकिन बहुत बड़े हाल, मैंने सुना कि पिछले साल जो हाल लिया था आपने उससे भी ये बड़ा है, और भी बड़े हाल में। मैं इनको पूछा, गिरिवर प्रभु को, लगभग 42 से ज़्यादा भक्त लोग साथ में जुटकर मीटिंग लेकर इस जन्माष्टमी की तैयारी वगैरह की है। और मैंने ये भी सुना कि सिर्फ भक्तों से ही कलेक्शन करके जन्माष्टमी किया हुआ है, बाहर के लोगों को सिर्फ एक अच्छा दिव्य अनुभव प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम ऐसे किया गया है। साथ साथ हमारे अनेक बच्चे कांग्रेगेशन के बहुत अच्छी तरीके से विविध मनोरंजक साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत करने वाला ऐसे कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया स्टेज में। जो टीचर आई थी, जो भरतनाट्यम टीम का, इस तरह के लोग भी धीरे धीरे जुड़कर वो प्रभावित होते हैं भक्तों के कांग्रेगेशन के संग से आकर। और पहले बच्चियाँ नाचने के लिए आते हैं, बाद में वो भी भक्ति में जुड़ जाते हैं। ऐसे इस्कॉन मंदिर में देखा गया है। और कल हमारे बीच में श्रीमान नित्यमुक्त प्रभु भी साथ में रहे, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक सुंदर नारायण के संबंध में एक गीत गाया। और आप देखेंगे कि त्यागराज भागवत हो, नहीं तो पुरंदर दास हो, अन्नमाचार्य हो, तुकाराम जी हो, एकनाथ हो, ये सब लोगों के अंदर भक्ति में दृढ़ता भी देखा जाता है, साथ साथ अपने बारे में बहुत निम्न सोचना और भगवान से कृपा याचना करना, भगवान की शरणागति, उनके पदकमल में शरणागति और उनकी कृपा याचना करना इनके गीतों में देखा जा सकता है। तो कल बता रहे थे कैसे हम लोग चिंताओं में और संसार में विविध तरह के तकलीफों के बीच में पड़े हैं और भगवान को पुकार रहे हैं, आप उठाइए ऊपर। तो इस तरह बहुत मधुर तरीके से वो भगवद गीता की महत्वता और कृष्ण की जन्म जो कंस के कारागर में होता है उसके संबंध में और अन्नमाचार्य के गीत इस तरह इत्यादि को बताकर बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में सब लोगों को समझाया उन्होंने। ये बहुत हमारी बड़ी सौभाग्य है। और अभिषेक भी बहुत सुंदर हुआ, भगवान के अभिषेक हुआ और प्रसाद बनाया है अनेक भक्त लोग साथ में आकर। मैं पूछ रहा था श्रीनिवास प्रभु किधर हैं, लोगों ने बोला कि किचन में है श्रीनिवास प्रभु। पूरे बड़े मात्रा में 2000 लोगों के लिए बनाया प्रसाद, शंभु प्रभु ने सबको नचाया। शुरुआत में कुछ लोग संकोच कर रहे थे नाचने के लिए, इनको देख कर सब भूल गए सब लोग। तो नए नए लोग भी अच्छी तरह नाच रहे थे कल। और हमारे कांग्रेगेशन शंभू प्रभु की बेटी ने, जिनको ट्रेनिंग दिया था हमारे बच्चियाँ, उन्होंने यशमते नंदन गाया, बहुत सुंदर लास्ट कीर्तन था वो, डांस बहुत सुंदर। तो इस तरह कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, जो बड़े इस्कॉन मंदिर में जिस तरह होता है ऐसे ही हुआ इधर भी कार्यक्रम, प्रचुर बहुत बड़े मात्रा में लोग आए। और एक एडिशनल चीज़ होता है कुछ इस्कॉन मंदिर में, जिधर लोग स्टॉल्स लगाते हैं जिसमें कुछ एग्जीबिशन होता है, बच्चों के लिए कुछ स्टॉल है, युवकों के लिए कुछ स्टॉल है, अगर वो ऐड कर देंगे तो पूरा आपका था, स्टॉल भी था, मैं देखा नहीं शायद मैं सीधा चला गया अंदर, बक्स प्रसाद का स्टॉल था उसका भी बहुत अच्छा, तो इसका फोटो निकलना चाहिए, एक पीपीटी बनाना चाहिए, जितना सुंदर तरीके से हुआ है कार्यक्रम। और बच्चों भगवद गीता के कंटेस्ट में भाग लिया हुआ बच्चे भी आए थे कल, वो भी अपने माँ बाप के साथ आ गए, उनको गिफ्ट्स वगैरह दिया गया था, तो अच्छा प्लानिंग था। ड्रामा हमारे ये जिन का एक ड्रामा किया उन्होंने, जिन का और मन का, लोग समझ गए मन कितना बड़ा बदमाश है, कैसे मन को शुद्ध करना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ आध्यात्मिक कुछ प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण भी लोगों को मिल जाता है इस तरह के उत्सव में। और अनेक प्रभुजियाँ अनेक माताएं बहुत तपस्या करके इस उत्सव को बहुत सक्सेसफुल यशस्वी बनाए हैं। तो इस तरह साल के बाद साल हम लोगों को भक्तिमय जीवन की अनुभव हम प्रदान करेंगे, लोग ज़रूर आकर जुड़ जाएंगे इसमें। अनेक लोग आते हैं इस तरह जन्माष्टमी के समय, जन्माष्टमी का ही दिन शुरुआत होता है उनके भक्ति का, भक्तिमय जीवन का प्रज्वलित दिन, पहला दिन वही होता है अनेक लोगों के लिए जो आते हैं इस तरह के उत्सव में। क्योंकि कृष्ण का कंस के कारागार में अवतरित होना और हमारे हृदय में भी कृष्ण भावनामृत जग जाना, दोनों में फर्क नहीं है। क्योंकि कंस के कारागार एकदम अंधकार छा गया था उधर, इस तरह हमारे हृदय में भी अज्ञानता रूपी अंधकार है, लेकिन कृष्ण जब अवतरित हुए तुरंत वो कारागार प्रज्वलित हो गया, जैसे मानो ट्यूबलाइट लगा गया हो। इस तरह देवकी के हृदय गर्भ में जब भगवान अवतरित हुए, पहले तो वसुदेव के मन में अवतरित हुए, उसके बाद उनके मन से देवकी के हृदय में प्रवेश किया भगवान ने। उस समय देवकी की खूबसूरती बढ़ गई, वसुदेव ने भी देखा, बाकी देवता लोग आकर जुट गए उस कारागर में, सब प्रार्थना कर रहे थे भगवान की आराधना करते हुए। तो उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो वैष्णव भक्त होते हैं, गुरु को जब अपनाते हैं, हम दीक्षा लेते हैं गुरु से, वसुदेव गुरु को संबोधित करते हैं और देवकी एक साधक साधना भक्ति करने वाले व्यक्ति को। तो जब इस तरह गुरु परंपरा में हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो बोलते हैं ना, प्रेम भक्ति यहाँ होते ना विद्या विनाश हो जाते, ऐसा वसुदेव के मन से देवकी के हृदय गर्भ में भगवान जब स्थानांतरित होते हैं इस तरह, उस समय देवकी की खूबसूरती बढ़ता है। इसी तरह एक भक्ता भक्ति में जब जुड़ता है उसकी खूबसूरती बढ़ जाता है। किस तरह की खूबसूरती है ये भौतिक खूबसूरती नहीं है, ये जब हम पुण्यमय जीवन जीते हैं उसमें एक तरह की सुंदरता है। जैसे आप लोगों को मालूम है एक त्रिवक्रा नाम का एक स्त्री कुबड़ी थी, उसका और एक नाम था कुब्जा। जब भगवान कृष्ण मथुरा के अंदर प्रवेश किया कृष्ण ने, उस समय अपने मित्रों के साथ कंधों के ऊपर हाथ डालते हुए कृष्ण इसे हंसी मजाक उड़ाते हुए चल रहे थे सड़क में, सामने से वो आ रहे थे, तो उसको देखकर भगवान ने कुछ मजाक उड़ाया अपने मित्रों को कुछ आनंद देने के लिए। उन्होंने पूछा कि हे स्त्री, तुम इतने तरुणी हो, इतने खूबसूरत हो, इतने पतले हो, इतना सुंदर तरीके से चल रहे हो, ऐसे उन्होंने कुछ बात किया, बातचीत किया, लेकिन वो तो तरुणी नहीं थी, वो बूढ़ी दिख रही थी, वो कुबड़ी भी था उसका, ऐसे एक हाथ में लाठी लेकर कुबड़ी जैसे चल रही है वो, लेकिन भगवान ने ऐसे हंसी मजाक किया। पूछा कि किधर जा रही हो, तो वो बोल रहे थे कि मैं कंस के पास जा रही हूँ, हर दिन मैं इसको चंदन लेपन करने के लिए मैं लेके जाती हूँ चंदन उसको। तो भगवान बोले, देखो तुम्हारे चंदन को मैं मुझे और बलराम को दोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरह भगवान ने बोला। तुरंत वो बूढ़ी स्त्री थोड़ा भी परवाह नहीं किया उन्होंने, उन्होंने डरा भी नहीं कि अगर कम से कम जासूस लोग आकर पहचान लेंगे मुझे तो जाकर कम से को शिकायत करेंगे तो कम से हमारे सर उड़ा देगा, ऐसे भी डर नहीं था उनको, होने की संभावना तो था ही लेकिन उसको डर नहीं था क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो कृष्ण की सेवा करके ही हम बैठेंगे। इस तरह तो कृष्ण को और बलराम को चंदन का लेप लगाया उन्होंने। तो तुरंत भगवान ने सोचा कि देखो ये बाग ये कुब्जा ने मेरी सेवा किया है, मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस तरह हम भी अगर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं भगवान तुरंत सोच विचार करते हैं कि इस भक्त को मुझे क्या देना अच्छा है, क्या देना चाहिए। देखिए कुछ कुछ भक्त लोग भगवान से कुछ मांगते हैं तुरंत भगवान दे देते हैं, इसका मतलब है कि अभी तक वो भक्ति में ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। क्योंकि अगर भगवान तुरंत दे देते हैं इसका मतलब है क्यों देते हैं वो भी बताया गया है भागवत में। इसलिए देते हैं कि थोड़ा मेरे से कुछ चीज़ मिलने के बाद भक्त टिक जाएगा, नहीं तो भाग जाएगा। इस तरह सोच कर भगवान दे भी देते हैं उनको। कुछ लोग बालाजी के पास जाकर बोलते हैं बालाजी हम महीने में 5 लाख प्रॉफिट मिले आपको 1 लाख, ऐसे बोलते हैं। बालाजी भी बिजनेस करते हैं उनके साथ, बोलते हैं नो प्रॉब्लम चलो तुमको आशीर्वाद मिल गया। तो वो लोग बिजनेस करते हैं बालाजी को जाकर चढ़ाते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो बालाजी को कोई धोखा नहीं दे सकता। ऐसे हमने एक कथा सुनी कहानी कि एक व्यक्ति ने बालाजी को बोला था कि मुझे जो भी पैसा मिलेगा मुझे लॉटरी में मिलेगा मैं आपको आधा दे दूंगा, ऐसा कुछ बोला था उसने। तो 1 लाख मिलेगा तो आपको मैं 50,000 दूंगा, लेकिन लॉटरी में उसको 50,000 ही मिला था उसको, तो अपने पास ही रख लिया। उसके मित्र ने बोला देखो धोखेबाजी नहीं करना चाहिए भगवान के साथ, जो भी मिला पहले आधा दूंगा बोला ना तुमने। लेकिन वो बोला नहीं नहीं 1 लाख मिलेगा तो आधा दूंगा 50,000 15,000 बोला, लेकिन 85,000 मिला मुझे मैं क्या करूँ। मित्र ने बोला ज़रूर जाओ बालाजी के पास 25,000 दे दो उनको, दिया नहीं। फिर भी गया तिरुपति में अपने फ्रेंड के साथ गया, क्योंकि वो फ्रेंड बहुत उनको पीछे पीछे कर रहा था वो, इसलिए जाकर क्या किया इधर उधर देखा कोई देख नहीं रहे थे, तो उसने सोचा कि 1,000 डाल दूंगा बस। तो 1,000 डाल दिया हुंडी में और आ गया। मित्र को झूठी बात बोला कि मैंने 25,000 दे दिया भगवान को, लेकिन घर आने के बाद देखा उसके रिंग भी अंदर गिर गया था वो, और उसका दाम कितना था 24,000 था उसका। तो बाला जितना लेना है वो ले ही लेते हैं ना। तो इस तरह अनेक लोग बिजनेस भी करते हैं भगवान से, लेकिन जो लोग देखते हैं कि कभी मांगने के बाद भगवान तुरंत देते नहीं, कुछ लोगों को भगवान इंतज़ार करने के लिए रखते हैं, क्योंकि हमको हमने जो मांगा उससे भी बढ़कर अच्छा चीज़ देने वाले हैं भगवान। इसलिए जैसे एक लड़का था हमारे IIT खड़गपुर में, वो उसने फ़ोन किया कि प्रभु जी सब लोग कॉपी कर रहे हैं एग्ज़ाम में इंटरव्यू में, IIT कंपनी के इंटरव्यू में, मुझे भी लग रहा है कि अरे सब लोग कॉपी कर रहे हैं मुझे भी कॉपी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला देखो तुम भगवान के भक्त हो इस तरह की धोखेबाजी नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं आपको। वो बोला कि प्रभु जी सबको नौकरी मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही मैं रह जाऊँगा नौकरी के बिना मैं निकल जाऊँगा, तो फ्रेशर को जॉब मिलना बहुत कठिन है। मैंने बोला चिंता मत करो। तो मैंने उनको बोला देखो दृढ़ विश्वास रखो भगवान के पास, जो सही टाइम पर करना है भगवान करेंगे। तो वो अनेक नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का नौकरी, एक एक करके निकल गया, उसके सब फ्रेंड्स को मिल गया। तो 6 महीना बीत गया उसका 4th सेमेस्टर में, लेकिन उसने कभी कॉपी नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान का भक्त हूँ आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो दिसंबर में उसका नौकरी लग गया, 10 लाख पर आना मिला उसको, बड़ा नौकरी मिल गया। वो बोला कि मेरे पास इतना मस्तिष्क भी नहीं बुद्धि भी नहीं है, पता नहीं कैसे दिया है लोगों ने मुझे, ऐसे बोल रहा हूँ। ये कंपनी वालों को मेरे ऊपर क्या विश्वास है मालूम नहीं, मैं इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था लेकिन मेरा मार्क भी उतना नहीं, फिर भी भगवान ने दिया। क्योंकि भगवान ने उनको क्यों अच्छा नौकरी दिया, क्योंकि उन्होंने वेट किया भगवान के ऊपर। कभी कभी भगवान वेट करके देते हैं भक्त को, कभी कभी भगवान और भी देरी करते हैं क्योंकि अपने आप को दे देते हैं भगवान अपने भक्त को। इस तरह बोला गया है सुदामा के सेक्शन में। अपने आप को भगवान दे देते हैं कुछ भक्तों को ऐसे. तो इस तरह देवकी और वसुदेव को भगवान ने अपने आप को दे दिया उनको अपने बेट के बेटे के रूप में. लेकिन अगर भगवान को कोई व्यक्ति बेटे के रूप में प्राप्त करना चाहता है उतना आसान काम नहीं है. क्या क्या तकलीफों को देवकी वसुदेव ने उठाया आपको मालूम है. देखिए उनके पूर्व जन्म में पृष्णी और सुतपा, उसके बाद आदित्य और कश्यपा, दो जन्म में उनको भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए. लेकिन जब पृष्णी सुतपा के शरीर में थे वो लोगों ने 10,000 साल के लिए कुछ सूखा पत्ता खाया. उन्होंने कठोर तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए पुत्र के रूप में. और इस जन्म में भी उनको 6 बच्चों को खोना पड़ा उनको. उसके बाद 7वां बलराम जी आते हैं, उसके बाद कृष्ण अवतरित होते हैं. तो शास्त्र में ऐसा एक वर्णन है, एक बार ब्रह्मा जी का एक कुछ गलत मिस्टेक हुआ. ब्रह्मा जी का क्या मिस्टेक हुआ उनसे, एक वाग देवी नाम का एक देवी की सृष्टि की उन्होंने. लेकिन उस वाग देवी की खूबसूरती को देखकर इनके मन थोड़ा विचलित हुआ. तो इनके मन के विचलन को देखकर चतुष्कुमार वो स्तंभित रह गए. ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख वाले हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, भगवान के पहले जन्म में आत्मज पुत्र हैं. इनके मन में इस तरह का गलत विचार कैसे आ सकता है. कभी कभी इस तरह की लीलाओं को भगवान करवाते हैं बड़ों के द्वारा, ताकि इस दुनिया के लोग जान सके कि इंसान को जितना सतर्क रहना चाहिए अपने जीवन में. लेकिन कुछ गलती किया नहीं ब्रह्मा जी ने, सिर्फ गलत दृष्टिकोण से देखा उन्होंने. उस समय चतुष्कुमार उनको पूछा, पिताश्री आपके मन में जो इस तरह विचार आ रहा, जैसे एक व्यक्ति था पुणे में, उसका 60 उम्र हो गया, उसका 4 बच्चे भी हो गए, लेकिन बीबी गुजर गए. अभी 60 के बाद वो पुनः शादी करने की योजना बना रहा था. तो बेटों बेटियों ने बोला कि पिताजी हमारा अभी भी शादी हुआ हमारा, तो आपका शादी की क्या ज़रूरत है, हम 2 बेटे 2 बेटी हम दोनों सेटल हो गए, अभी आप वानप्रस्थ ले लो, आप नाम जपो, 4 धाम यात्रा करो, भगवतधाम लौट चलो, 60 उम्र के बाद आप क्या शादी वादी की जो सोच रहे हो. तो लेकिन इस तरह कभी कभी बच्चों को बड़ों के बर्ताव से बड़ा शंका उत्पन्न होता है मन में ऐसे. इस तरह चतुष्कुमारों ने भी पूछा उनको कि आपके मन में इस तरह का गलत विचार कैसे आया, लेकिन वो बोल नहीं पाए, वो कुछ नहीं बोले. तो चतुष्कुमार मुड़कर भगवान के लिए, भगवान की ओर मुड़कर प्रार्थना किया उन्होंने, चतुष्कुमारों ने, हे भगवान आप ही हमारे पिताश्री को सद्बुद्धि दो ऐसे. उस समय भगवान एक हंसावतार नाम से अवतरित होकर आप पढ़ेंगे 11वें स्कंद में, हंसावतार के रूप में आते हैं भगवान और आत्मबोध कराते हैं. उस समय चतुष्कुमार प्रश्न पूछते हैं और हंसावतार जवाब देते हैं, आप पढ़ते हो. लेकिन इस घटना में और एक घटना घटा. क्या हुआ, मरीचि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे उनके 6 बच्चे थे. लेकिन मरीचि हंसे नहीं, लेकिन मरीचि के पुत्र जो 6 बच्चे थे वो ब्रह्मा की बुरा हाल देखकर वो हंस पड़े. इसलिए अगर बड़ों से कुछ गलती होता है तो हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. किसको क्या होता है किस समय हमें पता नहीं. जैसे कोई व्यक्ति कंपाउंडर बाहर सब मरीज लोगों को बिठाया है, अस्पताल के अंदर एक एक व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, है ना, तो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति किसी और को पूछता है, अरे तुम क्यों करके काशी हो रहा है तुम्हारा, वो बोलता है कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया मुझे, दवा ले रहा हूँ. अरे तुम्हारा टीबी हो गया क्या है, हमें टीबी नहीं है, देखो हमको हमारा एकदम ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, दूसरा व्यक्ति ऐसे बैठा है, अरे तुम क्यों ऐसे बैठे हो, बोलता है कि शर्म आ रहा है बोलने के लिए, मुझे थोड़ा पाइल्स हो गया पीछे, हंसता रे देखो पाइल्स हो गया इसका, देखो कैसे बैठा है देखो. तो इस तरह अलग अलग मरीज लोगों को देखकर हम लोग हंसने की संभावना है. लेकिन अंदर जब ये व्यक्ति जाता है, डॉक्टर बोलता है कि सॉरी टू से आपको ब्लड कैंसर हो गया है, अरे कैंसर हो गया हमको, देखने में एकदम टिक टाक दिख रहा हूँ बाहर आईने में, अंदर ही अंदर हो रहा है क्या, वो बोलेगा अभी नहीं पता चलेगा, 6 महीने के बाद पता चलेगा तुमको. इस तरह इस दुनिया में हम देखेंगे हर एक इंसान का विविध समस्या है. हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं सबका रिकॉर्ड किसके पास है? डॉक्टर के पास है. इसलिए हम एक दूसरे को देखकर हम बोल नहीं पाएंगे किसका क्या समस्या है, प्रॉब्लम है. डॉक्टर जानते हैं सबको. जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो जो होते हैं वो हमको सुधार सकते हैं. डॉक्टर को मालूम है. इसलिए मरीचि के पुत्र जब हंस पड़े उनके ऊपर एक श्राप आ गया. क्या था कि वो अपने दैवी गुणों को त्याग कर आसुरिक गुणों को प्राप्त करेंगे. ऐसे देखिए, हमारे अंदर अगर दैवी गुण हो, दैवी गुण से हम भी सुखी होते हैं, दूसरों को भी सुखी बना सकते हैं. लेकिन आसुरी गुण से क्या होता है, आसुर गुण के कारण एक नास्तिक बन जाता है एक व्यक्ति. भगवान को बोलकर सब कुछ अपने सोचता है कि मैं अपने बलबूते पर कर रहा हूँ, ऐसे सोचता है. गर्वी होता है, अपने आप को बड़ा मानता है, सब बाकी जीवों को तुच्छ क्षुद्र मानता है. और इस दुनिया में गाय बछड़ों को मारता है, भगवान के आराधना पूजा आराधना के विरुद्ध होता है. इस तरह से आसुरी प्रवृत्ति होता है. तो मरीचि के पुत्रों के ऊपर आसुरी प्रवृत्ति आ गया. इसके कारण क्या हुआ, अगले जन्म में ये कालनेमी के बेटे बने. कालनेमी कौन था? हिरण्यकश्यप का एक बेटा था. वो हिरण्यकश्यप का बेटा कालनेमी. कालनेमी के बेटे ये छह पुत्र बने, असुर बनकर आए अभी. लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि ये छह पुत्रों ने कालनेमी के, उन्होंने क्या किया, अपने दादाजी हिरण्यकश्यप को नकार कर सीधा जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की. उनसे गाइडेंस नहीं लिया. किससे? हिरण्यकश्यप से. ये दूसरा प्रॉब्लम इस दुनिया में. कभी कभी दादाजी बोलते हैं मेरा बेटा का बेटा जो है टीनेजर है, थोड़ा बैठ कर सुनो बोलूँगा तो सुनता नहीं है, मनमानी करता है. इस तरह बोलते हैं ना कभी कभी दादाजी होते हैं अपने पौत्र के. पौत्रों को इच्छा करते हैं कि पौत्र बैठ कर सुनना चाहिए. अनेक बार छोटे बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि दादाजी ओल्ड फैशन है, ऐसे वो सोचते हैं हमको क्या सुनना है. लेकिन कुछ कुछ दादाजी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करते हैं, माला लेकर बैठ जाते हैं पूजा रूम में, हरे कृष्ण करते हैं. वो भी खुश, वो उनका टीनेज पौत्र भी खुश. कभी कभी पौत्र पीछे से आएगा, बोलेंगे दादाजी कितने आप अच्छे हो, कुछ फीडबैक ही नहीं देते हो आप, कुछ नहीं, हमको डांटते नहीं हो, बोलते नहीं हो, अपने ही आनंद में हो, भक्तिमय आनंद में. इसलिए हम उनको प्रेम करते हैं. बच्चे को पकड़ कर बिठा कर समझाओ, बोलेंगे अरे पीछे पड़ता है, अरे छोड़ता नहीं, ये दादाजी थोड़ा एक हफ्ते के लिए बाहर जाएंगे तो हम शांत रहेंगे, ऐसे बोलेंगे. तो इस तरह हिरण्यकश्यप को बुरा लगा कि अरे देखो ये मेरे बेटे के बेटे मुझे कंसल्ट नहीं किया, हमने भी पहले ब्रह्मा की तपस्या किया है, हमको भी मालूम है, लेकिन हमको पूछे बिना अपनी मनमानी कर रहे हैं. तो उन्होंने ऐसे एक श्राप दिया उनको कि तुम्हारे पिताजी के हाथ में ही तुम मर जाओगे आप लोग ऐसे. तो अगले जन्म में क्या हुआ, ये कालनेमी बना कंस, और छह पुत्र कालनेमी के पुत्र क्या बने, वो देवकी के पुत्र बनकर आए. इसलिए वो छह पुत्रों का वध जो हुआ वो अच्छा ही हुआ वो, क्योंकि ये असुरों को असुरों के शरीर प्राप्त करके वो मर मिटने के बाद उनको सद्गति प्राप्त होने वाला है. वो वापस उनके अंदर दैवी गुण आ गया, मरीचि के पुत्रों को दैवी गुण आ गया. उसके बाद में कृष्ण भगवान एक बार उन छह पुत्रों को लेके आते हैं, लेके आकर देवकी के द्वारा दुग्धपान कराते हैं, स्तनपान कराते हैं वो, हाँ, क्योंकि तभी तो उनके अंदर दैवी गुण आ गया था उस समय. लेकिन उनके अंदर दैवी गुण आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वध करना पड़ेगा. इसलिए उनके ही पिता जो था कालने में, वो कंस बनकर आया. इसलिए कंस उनको मारना सही ही चीज था. अभी विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देवकी जो है वो भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है. एक साधना भक्त जो होता है उसके धीरे धीरे वैदिक भक्ति, उसके बाद रागानुगम भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ऐसे भक्ति बढ़ता है. लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य और एक छूट गया क्या है, मद. काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य छह चीज़ हैं. तो हम एक एक लाइन बोल देंगे, इसके बारे में आप समझ जाएंगे. आपको काम का मतलब क्या है, कृष्ण को छोड़कर भोग करने की इच्छा करना। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है वो हट करता है मुझे कोको चॉकलेट चाहिए, कभी कभी दुकान में हाथ पैर हिलाता ये डिमांड करता है मुझे चाहिए ऐसे। जैसे कभी कभी बच्चों को देखते हैं ये खिलौना चाहिए उसको दुकान में, वो बोलेगा माता पिता को अगर आप खिलौना उठा नहीं देंगे मुझे तो मैं घर नहीं आऊँगा, तो हट करता है। उसको भी क्या बोला जाता है, वो भी काम है। अभी छोटे बच्चे बलून के लिए काम करते हैं, खिलौने के लिए काम करते हैं, बड़े होने के बाद स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए काम होता है, वही होता है। और इस तरह कभी कभी और बड़े होने के बाद शादी वादी हो जाता है, अगर 4-5 साल पुत्र नहीं हुआ, पुत्र भाग्य प्राप्त करने के लिए काम होता है, इच्छा होता है। जैसे चित्रकेतु को बहुत इच्छा हुआ कि पुत्र होना ही चाहिए हमको, तो ऋषि मुनियों ने बोला कि देखो तुम्हारे तकदीर में नहीं है पुत्र प्राप्ति। वो बोला कि नहीं हमको ज़रूर चाहिए, कुछ भी यज्ञ करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद भगवान ने उनको ऐसे पुत्र दिया जो पुत्र होने से उतना ही तकलीफ हुआ उनको जितना होता था पुत्र ना होने से, ऐसा दिया उन्होंने ऐसे। तो इस तरह काम का मतलब है किसी भी चीज़ को खरीदना ही चाहिए। तो एक कहानी हमने सुना कि एक राजा के पास एक सैनिक था, उसके सभा में एकदम अपने मजे में रहता था, खुशी में रहता था, हमेशा मुस्कुराता था, नाचते हुए चलता था, नाचते हुए आता था। तो राजा ने सोचा कि देखो कितना खुशी में है ये हमेशा। लेकिन राजा ने सोचा कि मुझे देखो, मैं तो राजा हूँ लेकिन सुखी नहीं हूँ। तो मिनिस्टर को बुलाकर बोला कि देखो वो सैनिक इतना खुश में है। मिनिस्टर ने बोला वो क्यों खुश में है आपको पूछ कर बताता हूँ देखिए। तो उन्होंने बुलाया उस सैनिक को, बताओ तुम क्यों इतना खुशी में हो। वो बोला कि देखिए हमारा शादी हो गया, बीबी भी बहुत अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, एक छोटा झोपड़ी है हमारा, हम झोपड़ी में रहते हैं, खाने पीने की सब व्यवस्था तो राजा आप करते हैं करते हो, और क्या चिंता है हमको, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो वो चला गया। वो चलने के बाद मिनिस्टर ने बोला अभी देखिए कल परसों से उसका चिंता शुरू हो जाएगा। देखिए उन्होंने क्या किया, 99 सोने का सिक्के का एक पैकेट लेकर उसको उनके बगीचे में छोड़ा, उनके बगीचे में जमीन के निकट नीचे। तो ये पति पत्नी सुबह गार्डन में गए, जब खोद रहा था पति अचानक उनको ये पोटली मिल गया है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पोटली बोलते हैं उसका, वो मिल गया उनको। तो पत्नी को बुलाया, दिखाया, देखा आपने। तो पत्नी ने उसको निकाला, देख किसी को बोला मत, सब सोने के सिक्के हैं, सरकार वाले देखेंगे तो बोलेंगे कि हमारा जमीन उठा कर लेके जाएंगे वो। तो घर के अंदर चले गए, कुंडी डालकर अंदर बैठकर गिनना शुरू हुआ, कितना आता उधर 99 सिक्के थे। पत्नी बोले कि अरे अच्छी तरह गिनो, अभी अच्छी तरह गिना, 4-5 बार गिनने के बाद कितना मिला, 99 मिला बस। अभी बोले चलो गार्डन है उधर ढूंढते हैं, पूरा ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मिला नहीं एक सिक्का। वो बोल रहे थे कि इधर 100 सिक्का ही होना चाहिए, लेकिन कितना हुआ अभी 99 हुआ। तो 100 सिक्का 100वां सिक्का मिल नहीं रहा है ना, इसलिए वो बोली चलो अभी ऐसे काम धंधा करो, ओवर टाइम करो, हमको एक सोने का सिक्का लाकर इसके साथ जोड़ना है, क्या बनाने के लिए, साव बनाने के लिए। बोली चलो निकलो घर से, शाम को मत आओ, ओवर टाइम करो, नाइट ड्यूटी भी करो। तो नाइट ड्यूटी भी किया, वो दिन रात काम करके तंग आ गया बेचारा, पतला हो गया। अभी राजा के पास मिनिस्टर आया, अभी देखा कि उसका बुरा हाल हो गया, देखो अभी कैसा है वो है। अभी राजा ने देखा क्या किया तुमने, ऐसा कर दिया उसको। तो वो बोला ये सब एक सिक्के का मामला है, बोला। इस तरह इस दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, लोभ, लोभ के कारण काम क्या होता है, काम का मतलब चाहिए 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 से, लोभ का मतलब है और चाहिए और चाहिए, ये लोभ है। और जब लोभ का पूर्ति भी कभी कभी होता है उसके कारण गर्व आता है। अगर कोई है किसी को साइकिल चाहिए मिल गया, स्कूटर चाहिए मिल गया, कार चाहिए मिल गया, मर्सिडीज चाहिए मिल गया, अगर फैक्ट्री खोलना है फैक्ट्री भी खोल दिया, 5 फैक्ट्री खोलना 5 खोल दिया, वो सबसे बड़ा है वो उनके शहर में उनके बस्ती में वो भी हो गया। तो इस तरह उनकी इच्छा की पूर्ति होते जाता तो क्या हो जाता है, व्यक्ति गर्वित हो जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं 16वें अध्याय में, इदम अन्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्ति इदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम। हम बताते हैं कि आड्यो अभिजनवान अस्मि कौन्यो सदृशो मया, मेरे बराबर कौन है इस बस्ती में, शहर में, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे धनी हूँ, सबसे यशस्वी हूँ, सबसे बड़ा दाने हूँ, इस तरह अपने बारे में बड़ा सोचता है वो, इसलिए गर्व होता है। काम से लोभ, लोभ से गर्व, और गर्व होने के बाद क्या होता है, उसको पता चलता है कि मैं तो बड़ा हूँ ज़रूर, लेकिन मेरे जैसे और एक बड़ा व्यक्ति है, उसके साथ क्या होता है, स्पर्धा होता है, बड़ा स्पर्धा होता है, कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, तुम बड़ा हो, तो इसके कारण, स्पर्धा के कारण क्या होता है, कॉम्पिटिशन, स्पर्धा से ईर्ष्या बढ़ता है, मत्सरता बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ता है। अगर काम की पूर्ति नहीं हुआ तो क्या होता है, हाँ क्रोध होता है। अगर काम की पूर्ति हुआ तो लोभ होता है, और लोभ की पूर्ति हुआ तो गर्व होता है, गर्व गर्व बढ़ जाता है तब ईर्ष्या उत्पन्न होता है। इस तरह काम से सब उत्पन्न होते हैं, हम देख सकते हैं, तो षड रिपु बोलते हैं इनको। तो भक्त के हृदय में भी ये षड रिपु रहते हैं, जब तक हम शुद्ध भक्ति में पहुंचते नहीं है, शुद्ध भक्ति तक पहुंचते नहीं, उस स्तर पर जब हम नहीं आते हैं, इसको मल बोला गया है, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सूरज सताम, भागवत में बोला गया कि इस मल को निकालना पड़ेगा हमें, अगर हम नहीं निकालेंगे ना, हम शांति से भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप लोग अभी प्रसाद लिया इधर, अगर प्रसाद लेने के बाद इस कमरे की सफाई नहीं हुआ, अगर उपमा पड़ा है नीचे, चटनी पड़ा है, थोड़ा स्वीट सेवई पड़ा है ज़मीन में, आप लोग प्रसाद लेने के बाद पत्तल तो निकाल दिया आपने, लेकिन इधर उधर थोड़ा पड़ा है, कोई बाहर से भागते हुए अंदर आता है, उसके पाँव में चिपक जाता है, अच्छा लगता है, तुरंत बोलेगा क्या है, क्या है, क्या है, पाँव में आ रहा है मेरे, तो अगर गंदगी है कमरे में किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा पानी फेंक कर उसको सफाई करके, आजकल तो वाइपर आ गए, आपने देखा है ना, वाइपर से थोड़ा फिनॉल डेटॉल लगा कर वाइप आउट कर दो, पूरा फैन लगा दो, एकदम चकाचक सफाई हो जाता है, उसके बाद सूखने के बाद ये ब्लैंकेट डालो, तो सब लोगों को अच्छा लगता है ज़मीन में बैठने के लिए, है ना। जिस तरह ये कमरा जिधर जो साफ़ सुथरा नहीं है, हमें पसंद नहीं आता है, इस तरह जब हमारा हृदय साफ़ सुथरा नहीं है, तो हमें दूसरे व्यक्ति कैसे पसंद कर सकते हैं, कैसे भगवान हमको पसंद कर सकते हैं। तो अनेक बार हम लोग खुद के कमजोरियों को भी जानते नहीं हैं, हमारे अंदर अनेक कमजोरियां हैं, तो इन कमजोरियों के कारण इस दुनिया में हम अनेक गलतियों को करते हैं। अभी उदाहरण के लिए अगर काम बोलते हैं, काम का मतलब क्या है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, कभी कभी एक भक्ति में आने के बाद भी भक्त के अंदर ऐसे इच्छा होता है कि मैं ही निर्णय लूँ सब कुछ, बाकी कोई नहीं निर्णय लेगा, मैं बोलूँगा वो होगा, इस तरह का। लेकिन हमारे संस्था में प्रभुपाद की इच्छा थी कि सब भक्त लोग साथ में आकर मीटिंग ले, सबकी मत को सुनकर अंत में एक निष्कर्ष निकाला जाए जिसको सब लोग मानते हैं। इसमें अगर कोई वरिष्ठ हो, बुद्धिमान हो, सालों साल भक्ति किया हो, उसका भी मत सब लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, जब वो दूसरों के मत को भी सुनता है वो, इस तरह। लेकिन काम का मतलब है जब हम हट करते हैं, इसको बोलते हैं शेप अप और शिप आउट, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, है? इसका मतलब क्या है, माय वे और रॉन्ग वे, मेरा पद नहीं तो बाकी सब पद बेकार है, ऐसे इसको काम बोलते हैं इसको। और अगर इसको मानते नहीं है लोग तो हमें क्रोध होता है। देखिए क्रोध दो तरीके से हो सकता है, माधवेंद्रपुरी ने क्रोध किया किनके ऊपर, रामचंद्रचर्यपुरी के ऊपर, क्योंकि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी जब अपने देह त्याग करने वाले थे, उस समय उनको क्या बोला वो, आप क्यों रो रहे हो चिल्ला रहे हो, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करो, ब्रह्म में लीन होकर शांति प्राप्त करो। माधवेंद्रपुरी बोले अरे मूर्ख, मैं कृष्ण को बुला रहा हूँ, मैं कभी भी शरीर त्याग सकता हूँ, कृष्ण की चिंतन बढ़ाने के बदले तुम मुझे ब्रह्म ज्योति का ध्यान दिला रहे हो, अरे मूर्ख निकल जाओ इधर से, चेहरे दिखाओ मत, ऐसे बोले माधवेंद्रपुरी। लेकिन ईश्वरपुरी ने उनको कृष्ण की स्मरण करवाया, जैसे कृष्ण लीलाओं को पढ़कर सुनाकर, ऐसे तो बहुत खुश हो गए वो। उन्होंने ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया, हे वत्स तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो जाए, कृष्ण मतिरत्सु मतिरस्तु, कृष्णेन मतिरस्तु ऐसे उनको आशीर्वाद दिया और इसके कारण ये बहुत महान भक्त बने, ईश्वरपुरी चैत्र महाप्रभु के गुरु बने बाद में ऐसे। इस तरह जो रामचंद्रपुरी ने गलती करके क्रोध कमाया उन्होंने ऐसे, लेकिन हम लोग अपने जीवन में अगर हमारे काम की पूर्ति नहीं हुआ करके हम क्रोध करते हैं वो गलती है। और इस तरह अगर पूर्ति हो गया तो लोभ बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? हिरण्यकश्यप देखिए तीनों लोक मिल गया उनको, सब लोग बोलते थे ओम हिरण्यकश्यपवे नमः, और इंद्र बोल रहा है इनको भगवान नरसिंहदेव को, हे भगवान हिरण्यकश्यप इतना क्रूर राजा था कि लोगों के चित्त में भी क्या चल रहा है उसको मालूम था। अगर शांति से अपने चित्त में लोग बोलते थे भगवान का नाम नारायण नारायण नाम कैसे बोला तुमने, ऐसे पकड़ता हो है? अंदर ही अंदर भी आप बोल नहीं सकते थे, वो आपके अंदर की बात भी जानता था वो, इतना माइक्रो मैनेजमेंट था उसका, देख सकते हैं ऐसा करता तो। लेकिन हिरण्यकश्यप के सामने जो छोटा बच्चा आया था कौन? प्रहलाद। वो तो सामने आमने सामने बोल दिया कुछ चिंता नहीं हमको भगवान का नाम ले, आपको जो करना करो क्योंकि विष्णु जो है सबके स्वामी हैं, आप नहीं हो सबके स्वामी ऐसे। तो इस तरह उसको क्रोध आया प्रहलाद के ऊपर क्योंकि प्रहलाद उनका बात नहीं मान रहा था इसलिए। लेकिन बाकी सब लोग देवता लोग आते थे उसके सामने आकर अपने मुकुट को रखते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, उनको ऊपर चिल्लाता था, भगाता था उनको, उनसे सब भेंट लेता था वो। तो उसके लोभ बढ़ता गया बढ़ता गया, अहंकारी बना और अंत में सर्वनाश हुआ उसका भगवान नरसिंहदेव के हाथ में ऐसे। इस दुनिया में इस तरह जिस तरह साधारण लोगों के अंदर त्रुटियां होते हैं गलतियां होती हैं, इस तरह हम भक्ति में आने के बाद हमारे अंदर हमारे खुद के भक्ति के संबंध में बड़ा गर्व हो सकता है कि मैं बड़े बड़े भक्तिमान हूँ, मैं भक्ति में श्रेष्ठ हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूँ, बाकी लोग सबसे नीचे हैं। इस तरह की इसको बोलते हैं आत्मनो भक्ति दर्पतः, दर्प का मतलब अहंकार। तो मेरे पिताजी दक्षिण भारत में रहते हैं, जब मैंने पूना मंदिर का फोटो दिखाया मैंने उनको पहली बार, तो वो मुझे एक उपदेश दिया उन्होंने। वो बोले बेटा बहुत सुंदर मंदिर बना है पूना में, बड़ा मंदिर बनाया है तुमने, तो लेकिन ये मत सोचो कि तुमने बनाया है ये, लेकिन ये भगवान की इच्छा से इतना बड़ा मंदिर हुआ है, भगवान की इच्छा से इतना भक्ति का प्रचार चल रहा है। लेकिन तुम छोटे मंदिर जब होता था जितना सरल रहते थे उतना ही सरल रहो अभी भी, तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिमाग कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दिमाग में गर्व नहीं आ जाना चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तुम अहंकार बनोगे तो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगा तुमको। लोग सलाम मारेंगे दंडवत प्रणाम करेंगे, लेकिन लोग भी तुमको बड़ा चढ़ा मारकर बताएंगे मानेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगा तुमको, ऐसे बोले वो। तो उन्होंने मंदिर को आकर देखने के पहले से बोल दिया ऐसे। इस तरह हम लोग भक्ति में आने के बाद इसको नवसिख्या भक्त बोलते हैं। नवसिख्या भक्त का मतलब क्या है? वो दूसरे भक्तों के साथ संग नहीं कर पाता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं संग करूंगा तो मेरे कमियां पता चल जाएगा दूसरों को, अगर कमियां पता चलेगा तो लोग हमें निम्न मानेंगे, इसलिए हम संग नहीं करेंगे, अपने आप को बड़ा मानता है ऐसे। तो इस तरह कनिष्ठ मध्यम उत्तम बोलते हैं। तो कनिष्ठ से मध्यम जाने के लिए एक भक्त को अपने हृदय में इन त्रुटियों को देखना चाहिए, और कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी के बीच में एक महत्वपूर्ण एक फर्क है। क्या फर्क है? सर्वप्रथम ये फर्क है कि कनिष्ठ अधिकारी दूसरे लोगों में दोष देखता है, लेकिन देख कर छोड़ देता है उनको, बोलता है कि इसके अंदर वो दोष है, उसके अंदर ये दोष है, ये देखो वैसा है, वो देखो वैसा है, इस तरह उंगली दिखाता है, लेकिन उनको सुधारता नहीं है, नहीं तो सुधारने की क्षमता नहीं है, नहीं तो सुधारने के लिए क्या करना चाहिए उसको मालूम नहीं है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। मध्यम अधिकारी कौन है? वो भी दूसरों में दोष देखता है, लेकिन दोष देखने के बावजूद भी उसके मन में दृढ़ विश्वास है कि इसके इस दोष को सुधारा जा सकता है, लेकिन मार्ग क्या है? सुधारने वाले हम नहीं हैं, हमारे अंदर क्षमता नहीं किसी को सुधारने के लिए। सुधारने वाले कौन है? परमात्मा है। और वो किधर खड़े हैं? भगवान परमात्मा उनके ही हृदय में है। तो सुधारने वाला बाजू में ही खड़ा है उस व्यक्ति के। अभी हमें क्या बोलना पड़ेगा? उसको बोल देना पड़ेगा, देखिए आपके बेटा क्या कर रहा है, देखिए उसको थोड़ा सुधार दीजिए उसको। तो परमात्मा को बोलना चाहिए कि आप इनको मदद कीजिए। हम परमात्मा को प्रार्थना कर सकते हैं कि इसको सुधारिए। और उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति के त्रुटियों के बीच में भी कुछ अच्छा ही देख कर उसको प्रेम से समझा कर उसको उसके नाम से उसके मुँह से नाम निकालवा कर और उसको श्रवण करवा कर उस व्यक्ति को परमात्मा से जोड़कर परमात्मा के द्वारा उसके चित्त को शुद्ध कराना चाहिए। हाँ, ये मार्ग करता है, ये मध्यम अधिकारी है ऐसे है। क्योंकि आप एक श्लोक बोलिए, पीछे बोलिए, कर्ण प्रविष्ट रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथाशरत। ये बताते हैं कि कर्ण प्रविष्ट रंध्रेण, कान के द्वारा जब भगवान की कथा घुसता है हमारे चित्त में हृदय में, तो अंदर क्या करता है? जाकर चित्त को शुद्ध कराता है। कैसे? एक कमल होता है शरत ऋतु में, कीचड़ के बीच में रहता है, लेकिन वो एकदम साफ साफ रहता है शरत ऋतु के कारण, बारिश के मौसम के बाद। इस तरह एक व्यक्ति कीचड़ जैसे दुनिया के बीच में रहते हुए भी वो साफ सुथरा रहता है, क्योंकि परमात्मा उसके चित्त को शुद्ध करा देते हैं ऐसे इस तरह बताते हैं। तो इस तरह हमारे चित्त को शुद्ध कराने वाले भगवान है। और एक श्लोक बोल लेते हैं, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। ये बताते हैं कि इसका इस दुनिया में पुण्य कर्म क्या है? भगवान की कथा का श्रवण, पुण्य श्रवण, अब भगवान के नामों का उच्चारण, ये दिव्य श्रवण है। श्रृण्वताम, श्रृण्वताम स्वकथा का मतलब है भगवान अपने ही कथा को देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सुन रहा है। जो हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान, वो सोचते हैं देखो मेरा कथा सुन रहा है ये व्यक्ति, ध्यान पूर्वक सुन रहा है, प्रेम पूर्वक सुन रहा है, सुधारने की इच्छा के साथ सुन रहा है, आदर पूर्वक सुन रहा है और बार बार सुन रहा है, लगातार सुनता जा रहा है, और सुनता ही नहीं है, सुनने के बाद नाम भी ले रहा है, सेवा में भी जुड़ रहा है और भक्ति को तीव्रता से पकड़ा है और माया से डरता है। बहुत अच्छा है, इसके अनुकूल लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं इसके चित्त को मैं शुद्ध करा दूंगा, इस तरह सोचकर भगवान हमारे चित्त को शुद्ध कराते हैं। अभी मैंने अनेक चीज़ बोला है, उसमें से कितने आप लोग पकड़ते हैं देखेंगे। बोलिए, मैं 7-8 चीज़ बोला मैंने, भगवान परमात्मा क्या क्या देखते हैं बोले, एक एक बोले। कौन बोलेंगे क्या देख रहे हैं भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में? हमारे में क्या देख कर भगवान शुद्ध कराते हैं हमारे हृदय को? अभी मैंने लगभग 8 चीज़ बोला मैंने, कौन बता सकते हैं? ये हाँ, मेरा कथा सुन रहा है मेरा भक्त, इस तरह भगवान देखते हैं। वेरी गुड, हाँ मैं नाम ले रहा है, ठीक है, सुनना ही नहीं सेवा भी करना चाहता है, ठीक है, तीव्रता के साथ सुन रहा है, माया से डर रहा है, अच्छा वेरी गुड। हाँ ये तो प्रहलाद जैसे हैं, बचपन से समझ गए सर। हाँ वो प्रचार अभी तक मैं बोला नहीं प्रचार के बारे में, पहले हम सुधारेंगे उसके बाद प्रचार करेंगे हम। हाँ हमारे सुधार के बारे में बात चल रहा है अभी, नहीं 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 अरे ब्रह्मचारी लोग बोल रहे हैं उनको, आप बोलिए प्रभु। हाँ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, और भी कुछ बोला है, लगातार श्रवण कर रहा है, थकता नहीं है, घड़ी को नहीं देखता वो, ऐसे ऐसे भगवान देखते हैं, घड़ी को देख रहा है, मुझे देख रहा है ऐसे भगवान। और क्या, और कोई, और भी कुछ चीज़ बोला मैंने? नो नो, ब्रह्मचारियों को पूछा नहीं मैं, सब PTC के भक्त लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, इधर के आदिलाबाद के भक्तों को पूछ रहे हैं। देखिए वापस मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सूत गोस्वामी कथा सुन रहे थे इनसे, सुखदेव गोस्वामी से, लेकिन वक्ता थे सुखदेव गोस्वामी, श्रोतागण में प्रधान श्रोतागण कौन थे? परीक्षित महाराज थे, लेकिन उसी क्लास में ये भी बैठे थे, कौन? सूत गोस्वामी भी बैठे थे, लेकिन क्या बोल रहे हैं देखिए है? वो बताते हैं कि विप्र ऋषि विप्र तेजस, मैं उस सभा में था, अहम चाद्य गमम तत्र निविष्टस्तत अनुग्रहात, बोलते हैं कि मैं भी उस क्लास में बैठा था, लेकिन मैं क्लास को ध्यानपूर्वक सुन रहा था, ऐसे ध्यानपूर्वक सुन रहा था कि बाकी के दुनिया क्या चल रहा है दुनिया में मुझे मालूम ही नहीं था, एकदम पूर्ण रूप से ध्यान से सुन रहा था। तो इसलिए जब हम ध्यान से सुनते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण भी हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी के सामने जाओ, अपने बारे में थोड़ा बताओ, आपको मालूम है मैंने ये परीक्षा लिखा है, इतना मार्क मिला है, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, ऐसा आप बोलते जाओ और ऐसे सोरे ऐसे गिर रहे हैं, आपको कैसे लगेगा? आपको, अरे मेरे बारे में सुना रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहे हैं, सोचेंगे ना वो नींद आ रहा है उसको। इस तरह भगवान भी देखते हैं हमको, इसलिए जब भगवान देखते हैं कि हम कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लगातार सुनते जाते हैं, घंटों घंटे सुनने के लिए हम तैयार हैं, प्रेम से सुनते हैं और आतुरता के साथ, जिज्ञासा के साथ हम सुनते हैं इसे, और चित्त को शुद्ध करने के लिए हम सुनते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ सुनते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास के साथ हम सुनते हैं, और कनिष्ठ हो वरिष्ठ हो जो भी भक्त हो, सब भक्तों का आदर देते हुए सुनते हैं, क्योंकि संदेश के ऊपर आदर है, भागवत के संदेश के ऊपर, इसी कारण हम सब भक्तों से सुनते हैं, और सुनने के क्लास पूरे होने के बाद भी मन में वो ज्ञान चिपकता है, छूटता नहीं है, ऐसा नहीं कि क्लास हो गया कोई भक्त बोला क्या वाह क्लास, इतना सुंदर क्लास दिया प्रभु जी आपने, मैंने पूछा उनको एक पॉइंट बोलो क्लास से, कुछ याद नहीं प्रभु जी, फिर भी क्लास अच्छा था प्रभु जी, और ऐसा कैसा हो सकता है? अगर क्लास जैसे मैंने बोला कि नित्य मुक्त प्रभु का क्लास एकदम बढ़िया रहा, मैंने बोला, लेकिन तुरंत मैंने क्या किया, क्या क्या पॉइंट बोला प्रभु जी ने, करेक्ट ना, मैंने बोला ना 3 पॉइंट जो बोला उन्होंने, इस तरह अगर हमें पसंद आया तो हमें कुछ पॉइंट भी याद आना चाहिए। तो ये एक भक्त बोला थोड़ा वेट कीजिए प्रभु जी, नोटबुक खोलता हूँ पता चलता है, मैंने बोला तुम्हारा नोटबुक के अंदर संदेश, तो नोटबुक चला जाएगा बैक टू गॉड, तुमको जाना था तुमको भी याद रखना चाहिए, समझा ना। इस तरह हमारे चित्त को शुद्ध करने वाले कौन, हृदय तस्तो ही अभद्राणी विधुनोती, भगवान ही शुद्ध कराने वाले हैं। तो हम लोग भी हर दिन नाम जप करते हैं, हम भगवान को बोल सकते हैं हे भगवान आप मेरे चित्त को साफ कर दो, ताकि मैं निर्मल हृदय के साथ भगवत भावना के साथ ऐसे आपके नाम पुकारूं, ऐसे प्रेम से आपके नाम पुकारूं, जैसे यशोदा पुकार रही है, गोप पुकार रहे हैं आपको, गाय पुकार रही है आपको, ऐसे मैं भी प्रेम से पुकारूं आपको। लेकिन हम भगवान देखेंगे क्या हम मल को असली रूप में निकालना चाहते हैं कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान को हे भगवान हमारे चित्त को शुद्ध कर दो, लेकिन भगवान सफाई करने के लिए आ जाते हैं, झाड़ू लेकर बोलते हैं हे थोड़ा वेट करो। जैसे मेरे कमरे के सफाई करने के लिए कभी कभी मेरे असिस्टेंट लोग आते थे, प्रभु जी आपने बुलाया था सफाई करने के लिए, सफाई करो क्या? तो मैं उनको बोलता देखो वो टेबल को मत निकालो, उसके ऊपर पेपर वगैरह का उसको मत निकालो, वो कोने में किताब पड़े हैं उनको मत टच मत करो, क्योंकि मैंने एक ऐसे रखा है कि मुझे मालूम है क्या किधर है, तुम उसको उल्टा पुल्टा कर दोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा, इसको मत छू। तो बोलते थे ठीक है प्रभु जी, ये पेपर को लेकर डस्टबिन में, ए उसको भी मत छू, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर हो सकते हैं। नहीं प्रभु जी बहुत गंदगी भी पड़ा है। नहीं गंदगी के बीच में थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है उस। तो एक असिस्टेंट ने पूछा हमको, प्रभु जी किस एरिया को सफाई करना, बोलिए इसको मत छू, उसको मत छू, इसको मत छू। मैंने बोला बाद में आओ अभी नहीं। तो ऐसे ही हुआ कैलाश का, आपको मालूम है ना कैलाश, कैलाश इसको घड़ी में एक स्नूज होता है मालूम है आपको, स्नूज ऐसे बंद कर देते हैं उसको। ऐसे कैलाश नारद को क्या बोलता था, कैलाश भक्ति करना ही है हमको, लेकिन कब? बाद में, अभी नहीं। इस तरह हम भी देव की भी क्या बोलते थे, एक बच्चा होता था कंस से विनती करती थी, हे कंस मारो मत, छोड़ दो बच्चे को, 8वां पुत्र है ना तुमको मारने वाला है। तो देवकी को बच्चों के ऊपर जिस तरह आसक्ति था, लेकिन वो बच्चे थे कौन, आसरिक बच्चे थे, वो उनको मार। इस तरह हम लोगों को भी आ सकती है अपने काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, इत्यादि से। हम हमको निकलने का भी इच्छा है, लेकिन साथ साथ पकड़ कर रखने का भी इच्छा है। जैसे एक बार एक लड़का गया डॉक्टर के पास, उसको ये हो गया था, फोड़ा बोलते हैं, फोड़ा है, फोड़ा बोलते हैं ना, कोड़ा बोलते हैं, फोड़ा बोलते हैं, फोड़ा, हाँ फोड़ा बड़ा हो गया था उसका है, तो वो तो उसमें पस पस आ गया था उसको। तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा इधर आओ दिखाओ, ऐसे दिखा रहा हो डॉक्टर, इधर दिखाओ क्या, नहीं नहीं इस साइड दिखाओ, क्योंकि फोड़ा इधर है ना, इसको दिखाना चाहिए, नहीं नहीं डॉक्टर थोड़ा दर्द होता है, इसके बदले मैं इसको दिखाता हूँ। डॉक्टर बोले नहीं 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 मुड़ जाओ उसको मुड़ कर, थोड़ा डॉक्टर ने ऐसे हाथ लगाए, हा करके चिल्लाता हो निकट, तो पस भी अच्छा नहीं है शरीर, पस अच्छा है कि नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, निकलना चाहिए उसको, निकालने के बाद आपको रिलीफ भी होगा, अच्छा होगा, लेकिन उसको निकालने के लिए हम छोड़ते भी नहीं, हमको उसको रखने का भी इच्छा होता है, निकाल कर सफाई होने का भी इच्छा होता है। इस तरह हम लोग देखते, इसको अविद्या बोलते हैं। अविद्या का मतलब क्या है, संसार ही ऐसा है। जैसे कोई बोलेगा, अभी बीवी और पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा होता है, बोलता है पति तुमसे मैंने पता नहीं क्यों शादी किया है, ऐसे कभी बोल देता है, तो इतना सर दर्द मिला मुझे तुमसे, निकल जाओ इधर से। और बीवी बोलते हैं ठीक है आपने बोल दिया है ना स्वामी, निकल जाओ, मैं अपने माता के घर जा रही हूँ, तो एक हफ्ता के लिए चले जाएगी वो। तो फोन लगाता है, बोलता है कि इतना दिन के लिए किसने बोला है, निकल जाओ, आ जाओ अभी वो बोलते आपने ही बोला निकलने के लिए हमको है? तो बोला कि अभी कुकिंग कौन करेगा घर में, आ जाओ तुम अभी, बड़ा सर दर्द होता है, तुम होने से भी सर दर्द, ना होने से और बड़ा सर दर्द इसको संसार बोलते हैं इसको इस तरह भगवान ऐसे बनाया दुनिया है, इस तरह, इसलिए ये अनर्थ भी ऐसे ही है। लेकिन इसलिए देवकी को क्या चाहिए, देवकी के अंदर कंस के ऊपर भय होता है। देखिए कंस कौन होता है, माया का मूर्तिमान स्वरूप है कंस, इसलिए भक्तों को भी माया से क्या होना चाहिए, डरना, डर होना चाहिए। और मरीचि जो होता है वो मन है, मन से ये षड अनर्थ उत्पन्न होते हैं, षड रिपु मन के अंदर उत्पन्न होते हैं ना, इस तरह मरीचि के छह पुत्र हैं, है ना, इस तरह माया से उत्पन्न होने वाली काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य है, क्योंकि कंस जिनको मार रहा है अपने ही पुत्र को मार रहा है, करेक्ट है ना। तो मरीचि जो है, मरीचि इज द मूर्तिमान स्वरूप ऑफ द माइंड, मन का एक मूर्तिमान स्वरूप है मरीचि, और उसके षड पुत्र हैं षड रिपु। लेकिन इन षड रिपुओं को जब हम निकालेंगे तभी तो भक्ति जागृत होगा हमारे हृदय में। इसलिए क्या होता है, जब देवकी डरती है इनसे, कंस से, कंस आएगा बच्चों को पकड़ेगा, बच्चों को मारेगा, इस तरह के कंस के बारे में बार बार वो सोचती है, डरती है, इस तरह भक्तों को भी माया से डरना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जो भक्त माया से डरता नहीं वो माया से पकड़ा जाता है, और माया का लात खाना पड़ता है उसको। इस तरह भक्तों को भी सोचना चाहिए मन में, हे भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। हरि हरि विफले जनम गवाइनु, सब लोग बोले विफले जनम गवाइनु, मनुष्य जनम राधा कृष्ण नवाजिया, राधा कृष्ण नवाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, या सुनिया विष खाइन गोलो के प्रेम भरा, हरि नाम संकीर्तना, गोलो के प्रेम भरा, हरि
ರಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ರತಿನಾದನ್ ಮೇಲೋಕೆನೆ ತಾಯ ರತಿನಾದ ರತಿನಾ ಜನ್ಮೇಲೋಕೆ ನೇತಾ ರತಿನಾ ಜನ್ಮೇಲೋಕೆ ಸಂಸಾರ ವಿಷಾಲೆ ಜೀವನಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಜ್ವರೆ ಸಂಸಾರ ನಾಲೆ ಬಾಲಿ ಶಿಯಾ ಜ್ವರ ಜೋಡಾಯಿತೆ ನಾ ಕೋಯಿ ನೋವು ಪಾಯ ಜೋಡಾಯಿತೆ ನಾ ಕೋಯಿ ನೋವು ಪಾಯ ಜೋಡಾಯಿತೆ ಬ್ರಜೇಂದ್ರನ ಜಯಿ ಶುಚಿ ಸುತ ಹೋಲಾಸೈ ಬ್ರಜೇಂದ್ರನ ಜಯಿ ಶುಚಿ ಸುತ ಹೋಲಾಸೈ ಬಲರಾಮ ಹೋಯಲಾನೆ ತಾಯ ಬಲರಾಮ ಹೋಯಲಾನೆ ಬಲರಾಮ ಹಿನಾಯತಿಲ ಹರಿ ನಮೋ ಉದ್ದಿನ ಪಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಗದಾಯ ಮಾರ ಅಹೋ ಪ್ರಮಾನಂದ ಸುತ ವಿಷಾದನ ಸುತಾಯುತ ಸುತ ವಿಷಮನ ಸುತಾಯುತ ಮದಸಿ ಕೋಯಿ ನಾ ತಿಳಿ ಹೋ ರಂಗ ಪಾಯ ನರೋತ್ತಮ ಹರಿ ಹರಿ ಮನಮಗವಾಯನು ಹರಿ ಹರಿ
ದೇಖಿಸ್ ಗೀತ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಗಾ ರೇ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ ಮೇ ಜೀವನಕ್ಕೂ ವ್ಯರ್ಥ ಗಮವಾ ದಿಯಾ ಮೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಲೇಕಿನ ಇಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನಮ ಮೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ನಹಿ ಲಿಯಾ ಲೇಕಿನ ಗಪ್ಪ ಮಾರನೆ ಮೇ ವಿವಿಧ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕ್ಲೇಶ ದೇನೆ ಮೇ ಬಚಪನ್ ಸೇ ಅಭಿ ತಕ್ ಸಮಯ ಗಮವಾ ದಿಯಾ ಮೇನೆ ಔರ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಇಕಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಕದಮ್ ಬದಲೇ ಮನೆ ಅನೇಕ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಇಕಟ್ಟಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೇ ಕಿತ್ನಾ ಬಡಾ ದೂರ್ತ ಹೋ ಮೂರ್ಖ ಹೋ ಔರ್ ಆಪ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಸೇ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಉತರ್ ಕರ್ ಆಯಾ ಹೈ ಆಪ್ ಇತನೆ ಬಡೇ ಅತಿ ದಯಾಲು ಪರಮ ಕೃಪಾಲು ಹೋ ಕಿ आप हमारे हम तुच्छ जीवों की ओर अपने कारुण्य कटाक्ष बरसाते हुए आप एक दिव्य नाम के रूप में आए हो आप इस दुनिया में। इन नामों का इतना महिमा है कि उनकी उच्चारण करने से ही आप प्राप्त हो जाते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुझे इन नामों में रति नहीं है। नामों नाम करने के लिए जब माला उठाता हूँ लगता है कि कब पूरा कर दूंगा इसको, खत्म करके उसको लटका दो, अगले दिन तक उठाना नहीं पड़ेगा इस तरह। तो कितना दुर्भाग्य की बात है कि भगवत नाम लौटने के लिए एक सरल मार्ग आपने दिया है लेकिन मैं अपना नहीं पा रहा हूँ। और ये दुनिया तो जल रहा है बहुत बड़े आग के बराबर, और इस आग में सब जीव तड़प रहे हैं। जैसे महाभारत में एक उदाहरण है, कढ़ाई होता है मालूम है आपको, कढ़ाई होता है उसके नीचे आग जलाया जाता है, कढ़ाई के अंदर तेल होता है और तेल में पकौड़ा पूरी इत्यादि को फ्राई किया जाता है। इस तरह इस भौतिक ब्रह्मांड को यह कढ़ाई से तुलना किया है और उसमें जो तेल है ऐसे ये हो रहा है ना, उसको तीन गुणों से तुलना किया गया है और जो उसमें पकौड़े हैं हम ही पकौड़े हैं उसमें। और उसमें जो चम्मच है ना, वो चम्मच से इधर से उधर, वो दिन और रात, अभी आज दिन में ऐसा हुआ रात में और दूसरे साइड दिन में ऐसा उल्टा पुल्टा ऐसा करते हैं इस तरह। तो इस तरह सब जीव तड़प रहे हैं इस दुनिया में, संसार अभिशानाले दिबानिश ही आज वाले, दिन रात तड़प रहे हैं इस दुनिया में। तो भारत के लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका के लोग कुश में हैं, तो अमेरिका जाओ उधर के लोग भारत आ रहे हैं, करेक्ट है ना? कितने अमेरिकी लोग दिखाई देते हैं आजकल भारत में, इधर के लोग भौतिकता को बढ़ाने के लिए उधर जाते हैं, उधर के लोग आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए इधर आते हैं, देखा जाता है। तो मुझे कुछ उपाय नहीं इस संसार दावानल से बचने के लिए, लेकिन आप कृपा करके, आप नंद सुत, आप कृष्ण नंद के बेटे हो और राधा रानी के साथ आप आए हो दर्शन देने के लिए, और आपका भाई बलराम निताय बनकर आया है, और राधा और कृष्ण साथ में चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं और बलराम निताय बनकर आए हैं। तो आपके आने से इस दुनिया में सब जीवों के लिए बहुत कल्याण होता है। कारण क्या है? क्योंकि आप जगाए मदाए जैसे पापी से पापी जीवों को भी आप उद्धार करते हो आप हैं, और ये नरोत्तम दास के लिए दूसरा कुछ भरोसा नहीं है, आपके ऊपर ही भरोसा है, आप मुझे आश्रय प्रदान कीजिए, इस तरह प्रार्थना करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर से हमें सीखना चाहिए कैसे हम लोगों को भगवान के लिए भगवान से भीख मांगना, भगवान के पास जाकर रोना, भगवान से हमारी इच्छा को प्रकट कराना कि हे भगवान ये काम क्रोध लोभ इत्यादि को हमारे हृदय से हटा दीजिए, ताकि ये हटने के बाद आप खुद ही अवतरित होंगे हमारे हृदय में, करेक्ट है ना? तो ये छः के छः बच्चे हट जाने के बाद ही बलराम जी आते हैं। अभी बलराम जी कौन है? वो सेवा का मूर्तिमान स्वरूप है, क्योंकि शेष जो होते हैं ना, इस दुनिया के सब जीव अपने अपने सेवा करने के बाद भी जो भी बचा है वो भी वही करते हैं, अनंत शेष करते हैं, तो वो सेवा का मूर्तिमान स्वरूप है। आप लोगों को मालूम है कृष्ण का जब जन्म होता है देवकी और वसुदेव के यहाँ कारागर में, हाँ जब भगवान को उठा कर लेके जाते हैं वसुदेव, कौन आकर उनको छत्र बनाते हैं? हाँ अनंत शेष बनाते हैं, तुरंत सेवारत हो जाते हैं, भगवान का जन्म होता है तुरंत सेवा करने के लिए आ जाते हैं इस तरह है। उस समय इंद्र ने पानी बरसाया था लेकिन कृष्ण के ऊपर नहीं है, दोनों बाजू में पानी बरस रहा था लेकिन कृष्ण के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरा। इंद्र ने सोचा कि हमारे स्वामी हैं उनके ऊपर कैसे हम हल्का बारिश भी नहीं करना चाहिए, हैं थोड़ा भी उन्होंने नहीं डाला। फिर भी अनंत शेष ने सोचा कि मैं जाऊंगा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके प्रेम के कारण ऐसे तो इस तरह अनंत शेष सेवा के मूर्तिमान स्वरूप है। तो ये छह अनर्थ हमारे हृदय से अगर निकल भी जाता है फिर भी जब तक हम सेवा नहीं करेंगे भगवान नहीं आएंगे। इसलिए हम लोगों को ये ज्ञानी बनकर शास्त्रों को पढ़कर सिर्फ हम षड रिपुओं को निकालना इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे हृदय से काम क्रोध मतलब होने के बाद हमें सेवा में भी लगना पड़ेगा। भक्तिमय सेवा प्रभु जी बोलते थे, भक्ति मीन्स भक्तिमय सेवा। तो अगर हम सेवा नहीं करेंगे भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे हम। आपको आप जानते हो, देखिए ये गजेंद्र जब वो पानी के अंदर एक मगरमच्छ के पांव पकड़ा था, उस परिस्थिति में भी उसने सेवा की भगवान की, अर्चना आराधना की, करेक्ट है ना, सेवा छोड़ा नहीं उन्होंने। एक मातंग ऋषि नाम के एक ऋषि थे नासिक में, एक छोटी लड़की थी, वो 8-10 साल का थी, तो वो ऋषि मुनियों को देखती थी, हर दिन जाते हैं अपने कमंडल लेकर जाते हैं नदी में नहाने के लिए, तो ये छोटी बच्ची जाकर उनको पूछती थी ऋषि मुनियों को, आप जो भी करते हो अष्टांग योग ध्यान लगाते हो, मुझे भी सीखना है, आप थोड़ा सिखाओ। तो वो ऋषि मुनि हंसते थे कि बोलते थे कि तुम छोटी बच्ची हो, क्या समझोगी तुम, हैं कुछ नहीं समझ में आएगा। वो लोग छोड़ दिया, गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक ऋषि थे मातंग ऋषि नाम का, उन्होंने इस बच्ची को बोला कि मैं तुमको सिखाऊंगा। उन्होंने बिठाकर सिखाया, अष्टांग योग सिखाया, यम नियम प्राणायाम इत्यादि, और उन्होंने बोला कि तुम ये बात समझो कि ये सब योग पद्धति का अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान के सुंदर दर्शन का, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना है। तो तुम भी ये बात याद में रखते हुए तुम अष्टांग योग करो, भक्ति में जुड़ो, ऐसे सीखा कर वो चले गए वो मातंग ऋषि। लेकिन जाने के पहले एक बात बोला उन्होंने, अगर तुम भक्ति भाव में जुड़ोगे तो इसी जन्म में तुमको भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा, तुम धैर्य कभी मत खो बैठना। हाँ, जैसे एक स्त्री पुरुष शादी करते हैं, शादी करने के बाद कम से कम 1-2 साल छोड़ना पड़ेगा उनको बच्चा उत्पन्न होने के लिए, है ना, ऐसा नहीं कि अभी शादी हुआ अगले महीने बच्चा हो जाएगा। हाँ, इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए थोड़ा समय लगेगा हमें। हाँ, तो गुरु जो है वो एक पति के बराबर है, और शिष्य जो है वो एक व्हाट इज ए फर्टाइल वाइफ, फर्टाइल वाइफ, उपजाऊ, हाँ, एक शिष्य जो ऐसे एक स्त्री के बराबर है जो उपजाऊ है। तो अगर शिष्य जो होता है वो उपजाऊ हृदय होता है उसको, गुरु उस शिष्य के हृदय में कृष्ण के भक्ति का बीज बोते हैं, तो तभी कृष्ण प्रेम का पेड़ उगता है, उसके बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, समय लगता है उसके लिए। हाँ, इसलिए धैर्यता नहीं को बैठना चाहिए। बक्सन सुत ठाकुर बोलते थे कि एक गेंद होता है जिसमें रबर बैंड भी होता है, आप लोगों ने देखा है, रबर बैंड पकड़े हुए ऐसे उसको नीचे फेंको ऊपर आ जाता है, कितने लोगों ने देखा है, इसे देखा आपने, करेक्ट, उसे रबर बैंड के साथ होता है इसे, उसको रबर बैंड को हाथ में पकड़ लेने का और गेंद को फेंकने का वापस आ जाता है। हमारे उत्साह ऐसे होना चाहिए, ऐसे बताते हैं बक्सा चरित्र ठाकुर। हाँ, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम भी हो तुरंत उठ जाना चाहिए ऊपर, ऐसा नहीं कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे एक सर के ऊपर एक टॉवल डालकर बैठ जाओ ऐसे, है ना। आपने देखा है क्रिकेट लोग होते हैं जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर और बाकी लोग, एक बार भारत जीत गया करते हुए पोज दे रहे हैं वो लोग, लुक रहा है कि शेर जैसे दिख रहे हैं वो लोग, हैं ऐसे खड़े हैं सब लोग, ऐसे आप हाथ ऊपर करते हुए ऐसे बोल रहे हैं हम सारी दुनिया को जीत लिया हमने। तो अगले साल वो लोग हार गए, सब ऐसे सर झुके हैं, उनके ऊपर टॉवल भी है सबके। अभी न्यूज़पेपर वालों ने उसको भी क्लिक करके डाला है पेपर में। तो हम लोग अपने जीवन में भी कभी कभी पराजय प्राप्त करते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाता है हमारे हाथ से, तो भक्तों को क्या करना चाहिए, तुरंत उठ जाना चाहिए, जैसे वो गेंद उड़ जाता है ना नीचे से फेंकते समय उठ जाता है, इस तरह उठना चाहिए भक्त, ऐसे बताते हैं। तो इसके पहले मैं क्या बोल रहा था, गेंद के उदाहरण के पहले, हाँ सेवा बता रहा था, सेवा का मूर्तिमान स्वरूप कौन है, हाँ बलराम जी। इसलिए 6 बच्चे जाने के बाद कौन आता है गर्भ में, बलराम जी आते हैं। और बलराम आकर क्या करते हैं, भगवान के बेड और भगवान के सीट दोनों तैयार करते हैं, जो अनंत शेष की भगवान का बेड है। तो बलराम का एक छोटा अंश है अनंत शेष, हाँ उनको डालकर देवकी के गर्भ में, उसके बाद वो आगे जाते हैं किधर, अपने माँ से जन्म लेने के लिए, रोहिणी के गर्भ से जन्म लेने के लिए स्थानांतरित हो जाते हैं, कौन, बलराम जी। ऐसे जैसे हम मंदिर बनाते हैं, पहला चीज़ हम क्या डालते हैं भूमि में, अनंत शेष, क्यों, क्योंकि अनंत शेष ही भगवान के लिए बैठने के लिए आसन है, सोने के लिए भी वही आसन है भगवान के लिए, इसलिए वो पहले डालते हैं। तो अनंत शेष इसलिए आते हैं क्योंकि वो अनंत शेष का अंश शेष को छोड़कर जाने का मतलब यह है कि जब तक हमारे हृदय में नित्य निरंतर सेवा करने की भावना जारी नहीं रहता है, हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। सेवा सेवा के लिए आतुर होना चाहिए भक्तों को हा? आतुर होने से भगवान प्रेरित हो जाते हैं, देखो मेरी सेवा करना चाहता है। तो मैं इनकी बोल रहा था, मातंग ऋषि की याद है आपको हा? तो मातंग ऋषि ने उस लड़की को बिठा कर समझा दिया और बोले कि तुम धैर्य रखो, जरूर भगवान प्राप्त होंगे तुमको। 90 साल तक उन्होंने भक्ति की हा? और 90 साल होने के बाद एक दिन उनको पता चला कि भगवान रामचंद्र आए हैं उधर हा? तो रामचंद्र और लक्ष्मण सीता सब आए थे ना, तो उस समय रामचंद्र को अपना बेर बेर को खाकर वो क्या मीठा है क्या कड़वा है वो चुन चुन कर उन्होंने रामचंद्र जी को खिलाया उन्होंने। इसलिए आपने एक गीत सुना होगा हा? बहुत सुंदर गीत है, कौन कहते हम भगवान काते नहीं, कौन कहते हैं बारिशावरी के जैसे खिलाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषय से विष से हटाते चलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इस तरह शबरी सेवा करते 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 आई, जीवन भर सेवा की उन्होंने, अंत में भगवान प्राप्त हुए उनको। इसलिए षड बच्चों के बाद षड गर्भ बोलते हैं उनको, षड गर्भ निकलने के बाद बलराम जी आए। तो बलराम जी क्या करते हैं, हमारे अंदर जो जो भी बुराई गंदगी था उनके योनि में उसको उन्होंने निकाल कर कृष्ण के आने के लिए तैयारी किया। कभी कभी हमारे घर में भी गंदगी होता है, कोई बड़े मेहमान आने वाले हैं तो लोग क्या करते हैं, साफ गंदगी को एक कमरे में डाल देते हैं, ऐसे ब्लैंकेट लेकर इसको बंद कर देते हैं हा? तो अगर मेहमान आ गए वो कमरे में जाते हैं तो बोले हैं प्रभु जी उधर मत जाना, आप इधर आ जाए ऐसे बोलेंगे ऐसे है ना। तो हम साफ सुथरा रखना चाहते हैं, जैसे हमारे विद्यार्थी भी बोलते हैं मुझे प्रभु जी हमारे वॉइस सेंटर में आई है, इसे बुलाया किसी ने, मैंने बोला क्यों बुला रहे हो, बोलते हैं कि जब भी आप आते हैं प्रभु जी एकदम साफ हो जाता है सफाई कर देते हैं सब लोग। इस तरह बलराम भी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं कृष्ण को आने के लिए। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में, अगर देव की भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है तो भक्ति के अंदर अनर्थ कैसे हो सकते हैं, ये षड बच्चे जो षड गर्भ आते हैं कैसे हो सकते हैं। इसके संबंध में शास्त्र में उदाहरण दिया है, भगवान बताते हैं मत्स्तानी सर्वभूतानी नचाहम तेज अवस्थित है, सब सारे दुनिया मेरे अंदर है, सारे ब्रह्मांड कृष्ण के पेट के अंदर है, लेकिन उससे कृष्ण दूषित नहीं होते हैं, कृष्ण दूषित नहीं होते, वो पवित्र ही रहते हैं वो हमेशा। इस तरह हम जब भक्ति करते हैं साधना भक्ति उसके साथ साथ अनर्थ भी रहते हैं, लेकिन अनर्थ भक्ति के अंदर नहीं घुसते हैं लेकिन वो साथ साथ रहते हैं हा? अनर्थ भी जैसे आपके शरीर के ऊपर धूली है लेकिन नहाने के बाद धूली निकल जाता है, इस तरह अनर्थ भक्ति के साथ साथ रहता है शुरुआत में। हमारा भक्ति तो तीव्र भक्ति नहीं है, थोड़ा शिथिल भक्ति है, इसलिए अनर्थ साथ में आकर रहते हैं, लेकिन भक्ति जब तीव्र बनेगा तभी ये निकल जाता है अनर्थ हा? लेकिन भक्ति को वो आवृत नहीं कर पाएगा वो अनर्थ, इस तरह समझाते हैं। तो इस तरह बलराम आने के बाद क्या हुआ, 8वें बच्चे के रूप में कृष्ण उनके हृदय गर्भ में अवतरित होते हैं, तभी देवकी का सुंदरता बढ़ जाता है। इस तरह भक्त के अंदर भी जब अनर्थ निकल जाते हैं, बलराम का मतलब है गुरु तत्व, गुरु का आश्रय जब भक्त लेता है, गुरु क्या करते हैं आपके अंदर आप देख सकते हैं कि कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र योग मिश्र ये तीनों के बारे में समझाते हैं गुरु। कर्म मिश्र का मतलब क्या है, स्वामी भाव है? मैं स्वामी हूँ, इस जमीन का स्वामी हूँ, मैं इस बस्ती का स्वामी हूँ, मैं लोगों का स्वामी हूँ, इस तरह स्वामी भाव बोलते हैं उसको, हाँ, इसको प्रोपरेटरशिप बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो ये स्वामी भाव से हम क्या करते हैं, कोई पहचानता है अपने घर से पहचानता है। उदाहरण के लिए कभी कभी घर आपका पेपर आपका नाम में है घर का, हाँ, तो इंसान पहचानता है कि मेरा ही घर है, लेकिन घर असली रूप में देखा जाए तो भगवान का है, हाँ, भगवान ने हमको दिया है कुछ संपत्ति। लेकिन जिस तरह व्यक्ति अपने शरीर से पहचानता है, अपने रिश्तेदारों से पहचानता है, अपने घर से भी पहचानता है, अपने बिजनेस धंधा से पहचानता है, और इस तरह की पहचान से एक प्रतिष्ठा बढ़ता है, हाँ, और उस प्रतिष्ठा के कारण क्या होता है, एक व्यक्ति भक्ति तीव्रता से कर नहीं पाता है। तो मैं आदिलाबाद में देखा हमारे भक्त लोग कितने स्वाभाविक रूप से प्रेम से खुशी से नाच रहे हैं। इस तरह नाचना बहुत कठिन है, हाँ, लोगों को हाथ उठाना भी कठिन है लोगों को, क्योंकि बहुत संकोच होता है लोगों को, हाँ। हमारे लक्ष्मीनारायण प्रभु बोलते थे पुणे में, अरे जो जो व्यक्ति ने पाप का बोझ नहीं है वो हाथ ऊपर खड़ा करो, सब लोग हाथ ऊपर खड़ा करते थे। जिसका पाप का बोझ बहुत ज़्यादा है वो उठा नहीं पा रहे हाथ, आप नीचे रखो, हाँ। तो लोग बोलते अरे पाप का बोझ, अरे हमको भी नहीं है, कैसे आप करोगे, ऐसे करते थे लोग, हाँ। तो इस तरह अगर हमारा प्रतिष्ठा का अगर बोझ बढ़ जाता है तो हम गा नहीं पाते हैं, नाच नहीं पाते हैं, हमें संकोच होता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिष्ठा को छोड़ देता है, इस तरह के स्वामी भाव से ऊपर उठ जाता है, वो अपने आप को कृष्णदास मानता है, कृष्णदासी कृष्णदास मानते हैं, उनका कुछ प्रतिष्ठा की ये नहीं है। तो एक माता जी थी, उन दिनों में एक मंदिर में गुरु जी आए थे। ये माता जी की इच्छा थी कि मैं कुकिंग करूँगी गुरु जी को, हा? तो एक वरिष्ठ माता जी वो बोली कि देखो मैं 10 साल से कुकिंग कर रही हूँ, अभी तुम आकर देख लो और उसके बाद तुम कुकिंग करो। वो बोली नहीं नहीं माता, तुम हट जाओ, मैं कुकिंग करूँगी इस बार, मेरा दीक्षा हो गया पिछले बार, पिछले साल महाराज मेरे ब्राह्मण दीक्षा भी दिया है, मैं ही कुकिंग करूँगी बोल। तो माता जी बोली नहीं नहीं, गुरु जी साल में एक बार आते हैं, कुकिंग अच्छा होना चाहिए, इसलिए या तो तुम मेरे साथ करो नहीं तो नहीं, ऐसे वो सीनियर माता ने बोला। तो ये स्त्री माता जी अपने गुरु जब आए थे उनके सामने जाकर ओ करके रोने लगी वो। तो गुरु ने पूछा लीडर लोगों को, है आप लोग क्या कर रहे हो, रो रही है माता जी, हाँ इसको लेके जाओ समझाओ क्या प्रॉब्लम है। तो बाद में लीडर लोग उसको पूछा, उसको बुलाकर लेके आया माता, गुरु महाराज आपको कुकिंग करना चाहती है लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे हैं अंदर। तो सीनियर माता जी को बुलाया उन्होंने, क्यों छोड़ नहीं रहे हो उसको, हाँ? छोड़ो। तो उन्होंने सब समझाया। बाद में गुरुजी ने इस माता को बोला, देखो तुम बोल रहे हो सीनियर लोगों को तुम हट जाओ हम करेंगे, लेकिन एक बात समझो, किसी कोई वरिष्ठ माताजी कर रही है सेवा, अगर तुम उसको सहायता करोगी भगवान तुमसे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, हा? क्योंकि अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जन प्रिय बोलते हैं भगवान, मैं भक्तों को प्रेम करता हूँ, मेरे भक्तों के भक्तों का और प्रेम करता हूँ बोलते हैं भगवान, हाँ मेरे भक्तों को तुम सहायता दो मैं तुमसे और मैं प्रेरित हो जाऊँगा, ऐसे बोलते हैं भगवान, हाँ। क्योंकि भगवान देखते हैं कि भक्त कुछ मांग ही नहीं रहा है वो, लेकिन किसी से कुछ मांग रहा है और वो भी सेवा कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक हिजोलेंस गिरिराज महाराज नाम के एक महाराज जी थे, हाँ। तो ये महाराज जी अलग अलग बड़े लाइफ लोगों को जाकर लाइफ मेंबर बनाते थे वो। तो एक व्यक्ति के पास जाकर लाइफ मेंबर बनाने के लिए वो गए, लेकिन कोई छोड़ते नहीं थे उनको घर के अंदर, कैसे मैं घुस पाऊंगा घर के अंदर। लेकिन एक व्यक्ति बोला था, एक धनी व्यक्ति ने बोला कि मैं आपको एक स्कोडा दे दूंगा। स्कोडा बड़ा कर रहे क्या वो, स्कोडा कितना महंगा वो, नहीं स्कोडा स्कोडा नहीं आड़ी आड़ी कितना है, बस 40 लाख प्लस है। ऐसा कुछ गाड़ी दिया उन्होंने, बोला कि देखो ये गाड़ी एक दिन के लिए तुम ले सकते हो, बस यूज़ कर सकते हो तुम्हारे मंदिर के काम के लिए चाहिए तो। तो महाराज ने बोला कि एक दिन लेकर मैं क्या करूँगा, फिर भी ले लिया उन्होंने एक दिन के लिए। लेकिन उनको एक आइडिया आ गया मन में, देखिए भगवान ही आइडिया देते हैं ना प्रेरणा है। उन्होंने सोचा कि मैं धनी धनी लोगों के खानदान में चले जाऊँगा और वो लोग छोड़ेंगे मुझे अंदर। तो उस गाड़ी को लेकर वो गए, उसी दिन 20-25 लोगों के पास चले गए वो, हाँ बड़े बड़े लोगों के घर में। वो गाड़ी को देख कर ही वॉचमैन सलाम मारकर छोड़ता था अंदर। ऐसे चलते थे, सोचता कोई तो बड़ा आदमी आ रहा है ऐसे, लेकिन गाड़ी से निकलते थे महाराज जी बाहर ऐसे। तो आकर घर के अंदर जाते थे, कौन बैठा है अंदर मालूम नहीं, ऐसे घुस जाते थे वो, जाकर बोलते थे कि आई हमारे जन्माष्टमी आ रहा है, आपको बुलाने के लिए आए हैं, इन्विटेशन है। तो कभी कभी घर वाले आश्चर्य होता था, इसको कैसे छोड़ा अंदर इसको, फिर भी वो जाते थे। तो ये घर में जब गए, उस घर में वो तो था बड़ा आदमी, जो कोई भी था उसको इन्विटेशन दिया उन्होंने, बोला कि हम इस्कान से आए हैं। तो इतने में उनका छोटा लड़का आया, आपका उम्र कितना, आपका कितना, 13 है, यू आर 13, 14 है, खड़े रहे देखें। अच्छा ठीक है ठीक है, नाम क्या आपका, हाँ ठीक है, वर्मा वर्मा, ये वर्मा का 14 हो गया, मैंने सोचा इसका 8-10 होगा, ऐसे सोचा मैंने। तो वो 10 साल का एक लड़का था, 9-10 साल का छोटा, इससे थोड़ा छोटा। तो वो उधर आ गया, तो वो पिताजी बोल रहे थे महाराज जी को, महाराज जी मेरा एक लड़का है इधर घर में, एक ही इकलौता बेटा है, लेकिन थोड़ा डल है, ज़्यादा उत्साही नहीं है, थोड़ा डल रहता है। तो महाराज जी बोले कि नहीं नहीं, उसको बुलाइए मेरे पास, बुलाया। तो आपने एक स्टेनलेस स्टील बॉक्स था, उसमें से निकाल कर एक रसगुल्ला दिया उसके हाथ में। तो लड़का खाया, इसको इतना अच्छा लगा, अंकल और एक मिलेगा, ये हाथ के लिए एक और ये हाथ के लिए और एक, दो ले लिया उसने। तो दोनों खाया, उसको बहुत अच्छा लगा उसको। तो उन्होंने पिताजी को भी दिया, तभी पिताजी ने देखा कि बेटे के अंदर बड़ा उत्साह बढ़ गया है, एक प्रसाद खाकर मुस्कुरा रहा है, अच्छी तरह बातचीत कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे चेकबुक निकाल कर 5 लाख लिखकर दे दिया, बोला कि एक टोकन मनी ले लीजिए, बाद में मैं आऊँगा आपके मंदिर में, एक्चुअल डोनेशन बाद में दूंगा मैं आपको, दे दिया। तो महाराज जी बोल रहे थे, देखो जब बेटा खुश हो गया तो पिताजी भी खुश ऑटोमेटिक ऐसे। तो वो टोकन मनी दे रहा है कितना, उन दिनों में 5 लाख बड़ी बात है ना, और बोल रहा है कि एक्चुअल डोनेशन बाद में दूंगा, पता नहीं वो कितना होगा है ना, हो सकता है 20 लाख 50 लाख हो सकता है वो। तो महाराज जी चले गए, 4 दिन के बाद महाराज ने फोन किया वो घर में, कोई तो वॉचमैन उठाया फोन, बोले महाराज जी पलाना पलाना आदमी वो है क्या, वो सेठ जी है क्या। वो बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे आपने फोन किया सेठ जी को, वो तो बिजी रहते हैं, मिलते नहीं है, आप कौन नाम बोलिए हम उनको बताएंगे वगैरह। बोला महाराज जी बोले कि मुझे सेठ जी नहीं चाहिए, सेठ जी का बेटा चाहिए। बोला तो बेटा आ गया फोन में, कौन, बोला कि वो रसगुल्ला वाला अंकल। ऐसे बोला, अच्छा अंकल आप क्यों नहीं आए, अभी 1 हफ्ता हो गया, आपने बोला कि वापिस आएंगे। तो महाराज जी बोले आपने बुलाया नहीं इसलिए आया नहीं हमने, आप बुलावा आएगा तो हम आ ही जाएंगे। वो बेटा बोला आप चिंता मत करना, हम पिताजी को बोल देंगे, आप आ जाओ मैं बुला रहा हूँ आपको। तो अगले हफ्ते महाराज जी इस बार गुलाब जामुन लेकर गए, तो घर में चले गए, पिताजी को और भी खुश हो गए पिताजी, क्योंकि मेरा बच्चा इतना सुस्त, इतना उत्साह हमने देखा नहीं उनके अंदर, इतना उत्साह, तभी खुद आपको फ़ोन करके बुलाए हैं। तो इस तरह वो बड़े लाइफ मेंबर बनकर इस्कान के सदस्य बन गया वो धनी। लेकिन महाराज ये उदाहरण क्यों बोल रहे थे, अगर पिताजी को खुश करना है तो क्या करना चाहिए, बेटे को खुश कराओ। इस तरह अगर भगवान को खुश कराना है तो भक्तों को खुश कराओ, करेक्ट है ना, ये पॉइंट है। तो इसलिए ये पॉइंट के पहले मैंने क्या पॉइंट बोला, गिरिराज महाराज के पॉइंट के पहले, हाँ वो माता जी को महाराज ने बोला, देखो तुम अगर इस माता जी को सहायता दोगी तो मैं तुमसे और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, क्योंकि वो कर रही है और तुम भी असिस्टेंस दे रही हो, मैं भी खुश हो जाऊँगा। इसके विरुद्ध अगर आप लोग आपस में झगड़ा करोगे, कुकिंग में नहीं होगा, प्रसाद टाइम पर नहीं आएगा, दोनों झगड़ा करते रहेंगे एक दूसरे से, है कि नहीं है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये जब हम गुरु के आदेश को स्वीकार कर हम चलते हैं तो कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र योग मिश्र से ऊपर उठेंगे। कोई उदाहरण दे सकते हैं कर्म मिश्र भक्त के लिए, एक उदाहरण, देवताओं में श्रेष्ठ एक व्यक्ति है इंद्र, वो कर्म मिश्र भक्त है। कर्म मिश्र भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति भी चाहिए भोग भी चाहिए, वो कर्म मिश्र है, दुनिया का भोग भी चाहिए वो भक्ति भी चाहिए। इंद्र को ऐसा ही है, इंद्र को इंद्र पदवी भी चाहिए, साथ साथ उसको विष्णु भी चाहिए ऐसे। इसके कारण खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ होता है ऐसे, हाँ? इंद्र को ये कर्म मिश्र बोलते हैं ऐसे, हाँ? तो कभी कभी ये होता है, जैसे हम लोग भी प्रचार काम में जाते हैं, एक चैतन्य चरण प्रभु हम पुणे में मालूम आपको, वो वैज्ञानिक प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह देते हैं वो, हाँ बहुत बुद्धिमान है। और एक प्रभु जी हैं बाल गोविंद प्रभु करके एक भक्त हैं, जो बहुत अच्छा कांग्रीगेशन प्रचार करते हैं वो, बढ़िया। इस तरह हमारे राधा प्रमोद प्रभु हैं, एकदम बढ़िया यात्रा में लेके जाते हैं भक्तों को, पुणे के विद्यार्थी लोग सब भक्ति में जुड़े यात्रा के द्वारा, ये हमेशा इनका पांव एक स्थान में रहता नहीं, हमेशा ये तिरुपति में रहेंगे, पंडरपुर में रहेंगे, पुणे में, पुणे से इधर उधर, हमेशा इनके साथ 50 लोग 100 लोग, या ऐसे एक धार्मिक परिवार में जन्म है, इनके पिताजी भी पुजारी हैं, बालाजी के पुजारी हैं, तो बचपन से इनके पिताजी ने ऐसे अनेक कथा वगैरह बताया इनको, इस तरह। तो अलग अलग भक्तों के पास अलग अलग क्या है, शक्ति है। जैसे मैंने एक बार हमारे नित्यमुक्त प्रभु को सुना तिरुपति में, बहुत बढ़िया गा रहे थे गीता का श्लोक, हाँ मंदिर में सुबह गाते हैं वो लोग, और प्रवचन भी तेलुगु में जब देते हैं, अनेक लोग बोला करते थे कि इनका बहुत मधुर। पुणे में हम एक बार इनको स्वागत किया था, तो पुणे में आकर एक ब्रह्मचारी क्लास दिया, 1.5 घंटा क्लास दिया उन्होंने, उसके बाद भी ब्रह्मचारी बोले कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं अभी हम उनको, हाँ बोलते जाइए ऐसे। तो इतना मधुर कथा बताया बालाजी के संबंध में ऐसे। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, लोगों के अंदर अलग अलग क्षमता दिया भगवान ने, इसलिए आप देखेंगे जिस तरह अलग अलग, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा कुकिंग कर सकता है, कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, कोई मार्केट में जाकर बार्गेनिंग, क्या बोलते हैं बार्गेनिंग को, मोल भाव करना है, वो कर सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर सुपरवाइज कर सकता है, कोई भगवान किसी वगैरह को सजा सकता है। तो जो जिस कार्य करने में निपुण है हम उनको लगाना चाहिए, हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सबका स्वामी मैं ही हूँ। तो कभी कभी सब लोग सब कुछ हम ही करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो लोग प्रसन्न नहीं होंगे, हाँ। तो इसलिए ये इंद्र का एटीट्यूड क्या है, वो बहुत इनसिक्योर महसूस करता है, इनसिक्योरिटी, वो सोचता है कि अगर कोई किसी और को कोई प्रशंसा करेंगे तो मेरा वो पराजय हो गया सोचता है, अगर मेरा विजय होगा तो दूसरे लोग पराजित हो गए ऐसे सोचता है, ऐसा नहीं सोचता है कि मैं भी विजय प्राप्त करूंगा वो भी विजय प्राप्त करेंगे। हम इसको बोलते हैं जियो जीने दो, वो समझना चाहिए हमको, इंद्र समझ नहीं पाता इसको, लेकिन पृथु महाराज समझ गए, इसलिए पृथु महाराज को ब्रह्मा ने बोला कि तुम इंद्र को साथ दो ऐसे बोला उन्होंने। तो इस तरह ये कर्म मिश्र है, ज्ञान मिश्र का मतलब क्या है, बड़े शास्त्रों को पढ़ना लेकिन एक ज्ञान के तौर पर पढ़ना, भक्ति के तौर पर नहीं, भक्ति भावना को जागृत करने के लिए नहीं, ज्ञान के तौर पर पढ़ना ऐसे है। तो अनेक लोग पंडित बनते हैं, श्लोक वगैरह कोट करते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में अपनाते नहीं है, तर्क वितर्क वगैरह करते हैं ऐसे, जैसे केशव कश्मीरी था ऐसे लोग। और योग मिश्र क्या है, कंट्रोलरशिप, सब चाबे का गुच्छा अपने हाथ में चाहता है ऐसे है। जैसे कुछ मंदिरों में कुछ मठों में ऐसे लोग होते हैं 25 चाबी होता है उसके पास है, लेकिन एक ही गुच्छा में कुछ भी चाहिए, तुमको क्या बीबीटी चाहिए, में बुक चाहिए, खुद आ जाएगा बीबीटी खोलने के लिए है। तुमको डेटी रूम में कुछ महाप्रसाद चाहिए, मैं आता हूँ अभी उधर जाकर। तो ये एक व्यक्ति के पास सब कंट्रोल रहता है ऐसे, इस तरह के कुछ मठों में ऐसे रहता है। तो अंग्रेजी में बोलते हैं डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट बोलते हैं इसको, क्या मतलब क्या है, एक कंट्रोलरशिप का मतलब है, जैसे हिरण्यकशिपु का कंट्रोलरशिप आपने सुना है, इसके बदले हमें सोचना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जो थे उनके अनेक भाइयों को अलग अलग बस्ती में सेवा दिया था उन्होंने ऐसे, इस तरह हम लोग भी बांट कर सेवा करना चाहिए, बांट कर शेयर एंड सर्व, करेक्ट ना, शेयर एंड सर्व, इसका मतलब है हम हमारे विजय को, हमारे विजय जो प्राप्त होता है उसको दूसरों के साथ बांटना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर एक नेता को लोग बोके देते हैं, बोके मालूम है आपको, क्या बोलते हैं उसको, बोके, गुला गुल गुलस्ता गुलदस्ता। हाँ, अगर आपको गुलदस्ता एक के बाद एक मिलता रहता, अगर मुझे 10 मिलता क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, जो बाकी लोगों ने भी किया है उनको भी बंटवारा करना चाहिए। देखो आपने भी किया, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, सब सबको दे सकते हैं। अगर गुलदस्ता दे रहे हैं ऐसे पकड़ दे जाऊंगा मैं, और डालो और डालो और डालो ऐसा, और उठा नहीं पा रहे हैं, बहुत भारी हो जाता है ना, तो हम बंटवारा कर सकते हैं उन दूसरों को ऐसे। लेकिन इसलिए बोला गया है कि ये आइडियल लीडर इज वन हु पीप्स हिज नेक आउट ऑफ द विंडो टू डिस्ट्रीब्यूट द बुकेस, बाकी दूसरों को बांटता हो। और इस तरह समस्या होता है तभी लीडर को सामने रहना चाहिए। कभी कभी लोग सड़ा हुआ टमाटर फेंकेंगे ऊपर, तभी उसको स्वीकारने के लिए सामने रहना चाहिए। एक लीडर को ऐसा बोला गया, उसका मतलब है तकलीफों को झेलने के लिए तैयार और सक्सेस को बांटने के लिए तैयार। ये असली लीडर है। ये इस तरह सब कंट्रोल कृष्ण के हाथ में है, हम उसको बंटवारा करके लेना चाहिए। ये सही समझावट है। तो इस तरह हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं, काम है, वो कर्म मिश्र भक्ति लाता है। और जो हम हमारे अंदर स्वामी भाव है, अहंकार है, जिसके कारण ज्ञान मिश्र है, इस तरह कंट्रोलरशिप मेंटालिटी है। तो इन चीज़ों को कौन निकालते हैं? गुरु। लेकिन गुरु नहीं निकालेंगे, गुरु सिर्फ दिखाएंगे हमको। निकालने का काम कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान इच्छा करते हैं कि हम इन चीज़ों को, अशुद्धों को निकाल कर हम भगवान के पदकमलों में समर्पित हो जाए। ऐसे इसे बलराम जी आते हैं हमारे हृदय में। आपको मालूम है ना, ये धेनुकासुर नाम का एक असुर है, एक जंगल में रहता था। तो एक दिन की बात है कि सब गोप बालकों ने बोला कृष्ण को, हे कृष्ण, हे बलराम, उस ताल वन में ऐसे कुछ सुगंध फैलाने वाली फल हैं, इधर भी हमको सुगंध आ रहा है, आपको आ नहीं आ रहा? आपको, हे बलराम, आप तो शक्तिशाली हो, हे कृष्ण, आप तो सब असुरों को मारने में निपुण हो, हम विनती करते हैं कि हम लोगों को बहुत भूख हो रहा है, ऐसे बोला उन्होंने। एक्चुअली भूख उनको नहीं था, उनकी इच्छा था कि कृष्ण बलराम ये फल खाए, ये इच्छा था उनको। फिर भी क्या बोला उन्होंने? हमको भूख है। कभी कभी किसी मेहमान के घर में जाइए, वो आपको कुछ स्वीट राइस देंगे, गुलाब जामुन देंगे खाने के लिए। अगर आप मना करते हो, संकोच करते हो, तो वो क्या करेंगे? खुद भी खाएंगे वो, है ना, खुद भी एक ले लेंगे अपने हाथ में, आपको भी देंगे, बोलेंगे ठीक है तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा, तुमको कंपनी दूंगा मैं, खाते खाते हैं तुम भी खाओ। इस तरह गोप बालकों ने बोला कृष्ण को, हमको बहुत भूख है, आपको इच्छा होता आप आइए उस जंगल में, लेकिन बड़ा खतरा है उधर, धेनुकासुर नाम का एक बड़ा असुर है, वो कंस का आदमी है, कंस के लिए वो काम कर रहा है, और उसके अनेक मित्र भी हैं जो गधे के रूप में हैं। वो बहुत टेरिटरी कॉन्शियस है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टेरिटरी कॉन्शियस, इलाका का चेतना, मेरा इलाका है ऐसे, हैं इस तरह का इलाका चेतना बोलते हैं उसको, टेरिटरी कॉन्शियस। तो वो क्या करता था, वो बोलता था ये बगीचा हमारा है, इधर कोई नहीं आ सकता है, कम से कम बगीचे में मैं उसका सुरक्षा दे रहा हूँ, ऐसे वो सोचता था। लेकिन बलराम उधर घुस गए, बलराम और कृष्ण, और कृष्ण ने बोला बलराम ने क्या किया, वो पेड़ को ऐसे हिलाया तो पूरे फल गिरने लगे ऊपर से नीचे। आवाज सुनकर, जब सुना उसने, भागते हुए आया वो धेनुकासुर, ऐसे अबोटन लिया उसने, अपने पांव दिखाकर फट 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 ऐसे इधर पीछे से वो ऐसे मारा बलराम को। देखिए गधे को मूर्ख इसलिए कहला गया है, क्योंकि सामने से मारोगे तो पकड़ा जाएगा, तो आप निकाल सकते अपने आप को, पीछे से वो मार रहा है, वो आसानी से पकड़ा गया वो, है ना। और एक कारण है गधे को क्यों मूर्ख बोलते हैं, गधे का एक नाम है वैशाख नंदन बोलते हैं, सुना आपने? चैत्र वैशाख आता है ना, वैशाख के महीने में क्या होता है, थोड़ा घास इधर थोड़ा घास उधर होता है, उस महीने में गधा 4-5 गली पूरा कर लेता है, थोड़ा थोड़ा घास खाकर, अपने मित्रों को आकर बोलता है कि देखो आज मैंने 5 गली पूरा कर दिया। और दूसरा, बारिश के मौसम में घास इतना बड़ा पड़ा रहता है, वो काता काता इधर से उधर तक जाता है, तो उसको डर हो जाता है कि आज ज़्यादा खाया नहीं मैं, एक ही गली को पूरा नहीं किया, इसलिए सोच सोच कर कमज़ोर पड़ जाता है वो खाने के बाद भी। इसलिए उसको क्या बोला गया है, वैशाख नंदन मूर्ख है वो है। इस तरह मूर्ख गदा ने क्या क्या ऐसे मारा पीछे से, तो उनको बलराम ने उठाकर ऐसे गोल गोल घुमाकर ऊपर फेंक दिया। देखिए धेनुकासुर किसको संबोधित करता है, कर्म मिश्र, इसका मतलब है प्रोपराइटरशिप मेंटालिटी, स्वामी, क्योंकि वो अपने आप को स्वामी मानता था उस बगीचे का, करेक्ट है ना। तो इस तरह अनेक अनर्थों को दिखा देते हैं बलराम जी हमारे गुरु के रूप में रहकर, क्या ताकि हम उन चीज़ों से ऊपर उठे, हमें भक्ति प्राप्त हो। भक्ति हमें तब प्राप्त होगा सर्व उपाधि निर्मुक्ता तत्परत पेर निर्मला। इस तरह बलराम जी आकर गए, उसके बाद आठवें पुत्र के रूप में कृष्ण आ गए देवकी के गर्भ में। उसके बाद गर्भस्तुति नाम के प्रार्थना होता है, सब देवता लोग गुणगान करते हैं भगवान की, देखते हैं कि देवकी इतनी खूबसूरत है क्योंकि कृष्ण को धारण किया है अपने हृदय में। हम लोग भी कृष्ण को धारण करेंगे हृदय में, असली खूबसूरती बढ़ेगा। जैसे इनके बारे में कथा शुरू की, मैंने बीच में छोड़ दिया ना इनका, कुब्जा का, हाँ हम वो आगे चले गए कहीं और। कुब्जा का क्या हुआ मालूम है आपको, उसकी सेवा होने के बाद क्या किया भगवान ने, हाँ भगवान ने सोचा कि मुझे तो कुछ करना चाहिए इनके लिए, तो अपने पाँव को उनके पाँव के ऊपर रखा और उनके दोनों गाल पकड़कर ऐसे थोड़ा जर्क जकर उठा लिया, ऐसे भगवान ने ऐसे उठाया। अगले क्षण कुब्जा को एक सुंदर तरुणी स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया है, उनको अति सुंदरी बन गई वो कुब्जा ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कथा को बोलकर कि हम लोग भी इस दुनिया में कुब्जा जैसे कुबड़ी हो गए हैं। कारण क्या है, क्यों कुबड़ी हैं हम लोग, क्योंकि पाप का बोझ है हमारे पीछे है? पाप का बोझ उठा उठा कर हम थक जाते हैं इस दुनिया में, और पाप का कर्म फल धीरे धीरे नतीजा निकल रहा है, है? लेकिन इस पाप भंजन को निकालने के लिए हमें कोई भक्त की ज़रूरत है, जो हमें कृष्ण की भक्ति में जोड़कर हमें सेवा में लगाएगा ऐसे है? इस तरह जब वो सेवा में लग गई उनकी कुबड़ी निकल गई। हाँ इस तरह हमारे पाप कर्म का बोझ, हम तो आम सर्व पापे भी होमी, वो निकल जाता है, वो निकल जाता है और भक्ति में दृढ़ता आ जाता है, भक्ति में हम जुड़ जाते हैं और कृष्ण इस तरह हम एकदम सुंदर बन जाते हैं भक्तिमय जीवन में। जिस तरह प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उनका वयस कितना था प्रभुपाद जी की, हाँ 70 उम्र के थे, 69 पूरा हो गया था उनका, 70 शुरू हो गया था। तो 70 साल में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति जाता है अमेरिका में, 70 उम्र में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई उतना आकर्षण होता है लोगों को, हाँ तो कभी कभी बेटा बेटी भी अपने अपने काम काज में व्यस्त हो जाते हैं, पिताजी को बोलते हैं कि उधर इसी चार में आप रिलैक्स करिए, जो कहना है कहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, शांत रहिए, कुछ गड़बड़ मत करना, बड़बड़ मत करना है, बड़बड़ भी नहीं करना, गड़बड़ भी नहीं करना, दोनों नहीं करना, चुपचाप उधर आपके लिए न्यूज़पेपर आ जाएगा, पढ़ते जाओ, टेलीविजन देखो, न्यूज़पेपर को हो सकता है तो छोटा नन्ना मुन्ना आपके बेटा का बेटा है उसको वॉकिंग के लिए लेके जाओ, नहीं तो दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, आपके उपदेश अपने आप आपके पास रखो, है दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, वो 6 महीने 1 साल के अंदर ऐसे कुछ युवकों को जुटाया उन्होंने, साथ में लाया भक्ति माय जीवन में उनको जागृत करके, तो उसमें से एक मुकुंद और जानकी, जब प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं भारत लौट आने वाला हूँ 2 साल के बाद, तो जानकी माता जी बोले नहीं स्वामी जी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे जाने के लिए भारत, तो उनके टिकट को ले लिया उन्होंने अपने हाथ में, है जाने, वो बोले कि अगर हम टिकट ले लेंगे तो आप कैसे जाओगे आप भारत, तो सब लोग हंस पड़े, प्रभुपाद जी भी हंस पड़े। तो वो फोटो है आप देखेंगे, अब लीलामृत में है। तो इस तरह भक्तों को इतना घनिष्ठ प्रेम था प्रभुपाद जी के ऊपर, तो भक्त लोग रोते थे प्रभुपाद, तरसते थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। तो ऐसे एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेम कैसे जागृत हुआ, वो भी वो परदेश का व्यक्ति है, दूसरा जाति पाति का है, दूसरे धर्म को पालन करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इनके हृदय में इतना एक तरह का अटैचमेंट कैसे आया, ज़रूर इसमें तो कुछ आध्यात्मिक मार्मिकता होना चाहिए, हाँ क्योंकि प्रभुपाद के अंदर क्या सुंदरता थी, आध्यात्मिक सुंदरता थी, आध्यात्मिक खूबसूरती थी। इस तरह कोई भी व्यक्ति कृष्ण के ऊपर आसक्त हो जाता है, उसके आंखों में प्रेमांजन आ जाता है। जब प्रेमांजन आ जाता है वो व्यक्ति सदा 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण के लीलाओं में रमता है, दूसरों को रमाता है और सेवाओं में जुड़ा रहता है। हर क्षण वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ही सोच रहा है वो, उसको छोड़कर बाकी दुनियादारी चीज़ों में वो आनंद लूटता नहीं वो। इस तरह जितना एक जीव एकाग्र चित्त के साथ भक्ति करता है, एकांति नो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्रमग्नाः। ऐसे गजेंद्र गुणगान करता है एकांत भक्तों का। एकांति नो यस्य न कंचनार्थम, वो भौतिक पदार्थों में रमते नहीं, एकांति नो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्ना, वो भगवत प्रपत्ति का अपनाया अपने जीवन में, वो ही इच्छा वांछन्ति, दूसरा कुछ इच्छा नहीं करते हैं। अति अद्भुतम तत्चरितम सुमंगलम, भगवान के अद्भुत चरित्रों को सुनने में सुनाने में वो आनंद लूटते हैं। ऐसे गायंत, वो गाते रहते हैं आनंद, वो आनंद के समुद्र मग्ना, उस समुद्र में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कारा पानी का समुद्र है और उस दुनिया में रबड़ी का समुद्र है। क्या समुद्र है उधर? आनंद का समुद्र है। ये लोग भक्ति भक्ति करने वाले लोगों को तुलना किया गया है एक डॉल्फिन से है, जो डुबकी लगाता है आध्यात्मिक भक्ति रसामृत सिंधु में डुबकी लगाता है। इसे तो इस तरह देव की भी भक्ति भाव जागृत हो गया, कृष्णा आ गए उसके हृदय में, प्रेमा भक्ति जागृत हो गया देवकी के हृदय में ऐसे। तो तभी सब देवता लोग आकर कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, बोलते हैं भगवान आपको कोई अपने आप समझ नहीं सकता है जब तक आप दर्शन नहीं देते हो, हैं आपकी कृपा से हम लोगों को आपकी दर्शन प्राप्त होने वाला है। आप आते ही इस दुनिया में मंगल फैल जाएगा। कल बहुत अच्छी तरह हमारे नित्यमुक्त प्रभु ने बोला कि इस आदिलाबाद गांव में जो मंदिर, इस मंदिर में जो शिव विग्रह था वो लोग उन दिनों में संभाल नहीं पाए, तो इसलिए उस व्यक्ति के गुरु जी ने बोला इनके कृष्ण को उधर लेके आओ वृंदावन में, तो वृंदावन लेके गए हमने सुना। तो इधर कुछ लोगों को अपने काम धंधा में नुकसान हुआ, कुछ अकाल इत्यादि वगैरह होने के बाद लोगों ने सोचा कि कृष्ण निकल गए इसलिए हमारे सुखावट दिखाई दे रहा है। यही बात कुंती ने भी बोला, हे कृष्ण आप हम लोगों को छोड़कर हस्तिनापुर छोड़कर आप द्वारका वापस लौट जाओगे तो हम लोगों के जीवन में समृद्धि नहीं रहेगा, हम सूखे सूखे पड़े जाएंगे, जिस शरीर में आत्मा नहीं हो इस तरह हम हो जाएंगे मृत शरीर जैसे, ऐसे बोला उन्होंने। तो ये लोगों का इधर सोचना सही था उस समय, लेकिन गिरिवर प्रभु, उनके धर्मपत्नी और इस परिवार के अनेक मित्र लोग जो भक्ति में जुड़े हैं, उन दिनों में गिरिवर प्रभु जब पुणे में रहते थे उनके अनेक निकट मित्र थे, जैसे किशोर प्रभु जैसे, है ना, इतने निकट मित्र थे इनके, तो उनके साथ इतना निकट संबंध था इनके मित्रों के साथ इनका, पुणे के लोग रोते थे जब वे पुणे छोड़कर इधर आने वाले थे। अनेक लोगों ने बोला कि तुम्हारे माता पिता को इधर लेके आओ पुणे में, लेकिन वो बोले कि माता पिता को नहीं ला पाऊँगा क्योंकि उनका बिजनेस धंधा है आदिलाबाद गाँव में। तब मैंने पूछा इनको आदिलाबाद किधर है, हमने सुना नहीं है, तो बोले कि तो उन दिनों में हम सोचते थे कि कैसे प्रभु जी अकेले रहकर भक्ति करेंगे, लेकिन इधर आने के बाद खुद भी भक्ति किया, अनेक लोगों को जोड़ा इन्होंने, इनके 3 बच्चे हैं करेक्ट ना, एक बेटी और 2 बेटा है, तो ये इनके वाइफ भी इतना उत्साही है, प्रभु जी भी उत्साही हैं, तो इस तरह उनके उत्साह के कारण अनेक ब्रह्मचारी लोग जैसे देवानंद पंडित प्रभु, कृष्णानंद प्रभु, ये लोग बहुत साल से आकर गए हैं, उसके बाद नित्यमुक्त प्रभु आकर गए हैं, तो राधा प्रमोद प्रभु कुछ 1-2 साल पहले इनकी परिश्रम, इनके प्रयत्न, इनके तपस्याओं को देखकर और निकट आकर मदद किया है उनको। तो ये भगवान की असीम कृपा है आदिलाबाद के भक्तों के ओर ऊपर कि रेडीमेड मंदिर आपको मिल रहा है इधर, एकदम चकाचक पत्थर का भी और मार्बल का भी बनाया हुआ। तो अगर डिजाइन करके ऐसा मंदिर बनाना हो तो बहुत महंगा पड़ेगा आजकल के दिन में। इतना बड़ा कंपाउंड है, इतना अच्छा सुविधा है, ऑफिस वगैरह हैं, सब कुछ है, सब कुछ रेडी है। राधा पुनम प्रभु के पास विद्यार्थियों का टीम है, है? और गिरिवर प्रभु के साथ अनेक भक्तों का परिवार है जो जुड़े हैं इस तरह है। और इधर विजिट करने के लिए अच्छे अच्छे भक्त हैं, नित्यमुक्त प्रभु हैं, राधा प्रमोद प्रभु हैं, जो हर महीना आकर ध्यान दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस तरह आप लोगों को आदिलाबाद को डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया मौका है। जिस स्थान में भक्ति का वर्धन होता है उधर भगवान का शिव विग्रह अवतरित हो जाता है, ये देखा गया है। क्योंकि क्यों भगवान अवतरित होते हैं, वो भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा के लिए आतुर हैं। जिधर भक्त लोग प्रेम सेवा देने के लिए तैयार हैं उधर भगवान आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आदिलाबाद में माताओं की भक्ति और ज़्यादा प्रबल है, ऐसा लगता है। माताओं की संख्या बड़ा है, अभी प्रभु जीओं का संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा हमको, हाँ? क्योंकि इधर आधा लोग हमारे पीटीसी लोग बैठे हैं, हाँ? उनको निकाल देंगे, प्रभु जीओं का संख्या गिना चुना है। आप बोलेंगे प्रभु जी शाम के टाइम बहुत प्रभु जी आते हैं, वो ठीक है, लेकिन कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ असली संख्या गिनना हो तो सुबह का टाइम गिनना चाहिए, है ना? उधर से पता चल जाता है कि कितने गंभीर हैं भक्ति में। सुबह अगर कोई उठकर आता है अपने नींद को छोड़कर माला लेकर आ जाता है जप माला करने के लिए, मतलब गंभीर हो गया भक्ति में, है? तो आपके प्रभु जीओं में भी कुछ गंभीर भक्त लोग हैं, जैसे शंभू प्रभु हैं, श्रीनिवास प्रभु हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं इधर भी। मैंने आपके आपके घर में मिला था, लगभग 15-20 लोग थे ना, वो लोग कमेटी में जुड़कर बहुत सेवा तो ज़रूर दे रहे हैं। तो आप लोग भक्तों की संख्या को बढ़ाओ, नए लोग जो आए हैं कल उनको वीकली प्रोग्राम में जोड़ो, इस तरह जोड़कर उनको 4 माला, 8 माला, 16 माला तक लाइए। तो इस तरह भक्ति में आगे करेंगे, भगवान भाग कर आएंगे आपके यहाँ। देखिए ये मंदिर तो एक दो से एक साल के पहले मिल गया है ना प्रभु प्रभु जी, भगवान अभी भी क्यों नहीं आ रहे हैं, भगवान थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग सीरियस है क्या, नहीं देख रहे हैं भगवान। कभी कभी लगता है सुबह उठ जाते हैं, कभी उठते नहीं हैं, कभी आते हैं कभी जाते नहीं, कभी संख्या बढ़ा कभी कम छोटा है संख्या। भगवान को थोड़ा डर है कि अगर मैं आ जाऊँगा तो सेवा नहीं मिलेगा तो क्या लाभ है, कहीं और जा सकता था मैं, ऐसे भगवान सोचते हैं। इसलिए देवकी की गर्भ में भगवान दो कारण से आए, एक है षड गर्भ निकल गया, काम क्रोध मतलब मोह मत्सर इत्यादि वो निकल गया, और गुरु भी आ गए बलराम जी आकर कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र योग मिश्र ये सब निकाल दिया, साफ कर दिया, एक सुंदर सिंहासन को तैयार कर दिया भगवान के लिए, और कृष्ण भगवान आ पहुँचे उधर। इस तरह कृष्ण हमारे एक ओर कृष्ण हैं, दूसरी ओर षड गर्भ है। अगर देवकी अपने 6 बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं है कंस को देने के लिए, वो खुद ही उसको मार देगा कंस। इस तरह भक्त लोग हमारे काम क्रोध मद लोभ इत्यादि को हम त्यागेंगे नहीं, हमारे खुद का भक्ति ही निकल जाएगा हमारे हाथ से। इसलिए आप लोग देखते हैं उसको ब्लूपिंग बोलते हैं ना, ब्लूप। कुछ लोगों का पतन हो जाता है भक्ति में, क्यों, वो लोगों ने ये अनर्थों को पकड़ कर रखा है, इसलिए वो लोग अनर्थ उनको मार देते हैं उनको। लेकिन अनर्थों को जो त्यागने के लिए तैयार है, जैसे उन्होंने 6 बच्चों को त्यागा कंस के ऊपर भय रखते हुए, इस तरह माया के ऊपर भय रखते हुए अगर हम इन षड रूपों से ऊपर उठ जाएंगे तो गुरु की आश्रय प्राप्त होता है, और उससे कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, और कृष्ण प्राप्त होते ही आनंद ही आनंद है। क्योंकि जब कृष्ण का अवतरण हुआ कंस के कारागर में, तुरंत ब्राह्मणों की आवाज जोर से सुनाई दिया, सहस्त्र शेरशा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स्वभूमिं विश्वतो वृत्वान् अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छ भव्यम् उदाम्बृतत्पश्येषानः यदन्नेनातिरोहत। इस तरह ब्राह्मण लोगों का आवाज बहुत सालों के बाद पहली बार सुनाई दिया. क्यों? कंस से भी वो डरे नहीं ब्राह्मण लोग मंत्रम को गाने के लिए, क्योंकि पता चल गया कि भगवान आ ही गए अभी. इस तरह हमारे भक्ति जब जागृत हो जाएगा, माया से भी हम नहीं डरेंगे उस टाइम. क्यों? माया को पकड़कर हम कृष्ण की सेवा में लगा देंगे हम, उसकी शक्ति आ जाएगा हमारे में. लेकिन अभी क्या करें, माया लात दे रही है. लेकिन भक्ति में आने के बाद हम माया को भी लेकर कृष्ण की सेवा में लगाने की शक्ति आ जाएगा भक्त में. विष्णु और माया इदम पश्यन सवै भागवतोत्तम है. उत्तम भागवत बनेंगे तभी माया से हम फंसेंगे नहीं, माया को तरेंगे. जैसे हरिदास ठाकुर ने माया को उद्धार किया उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगा कर. ऐसे इस तरह वातावरण, सुंदर वातावरण छा गया, मनोरम वातावरण. तालाब में कमल उग रहे थे, ये बतख और हंस पक्षियां तैर रही थी, पंछियां कलरव कर रही थी, दिव्य नदियां जैसे यमुना जैसे बह रही थी बहुत अच्छी तरह. और आसमान में सुंदर वातावरण छा गया. चंद्रमा ने सोचा कि आज अष्टमी का दिन है. चंद्रमा तो एकदम छोटा रहता है ना अष्टमी के दिन, लेकिन चंद्रमा पूर्णिमा बन गया. उन्होंने सोचा कि चंद्र वंश में भगवान अवतरित हो रहे हैं, उनकी खुशी के लिए चंद्र ने पूर्णिमा बन गया, पूर्णिमा का दर्शन प्रकाशित किया. ऐसे उन्होंने इस तरह आसमान में बहुत मधुरता से मेघ गरजने लगा. मेघ गरजने से लोग डरते हैं, लेकिन यह मेघ ऐसे गरज रहा था, लग रहा था मानो गा रहे हैं वो. ऐसे मेघ और समुद्र आपस में बातचीत करने लगे. मेघ ने बोला समुद्र को, हे समुद्र, भगवान का नाम तुम्हारे नाम से जोड़कर भी लोग बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा. हाँ, सिंधु का मतलब क्या है? समुद्र. ठीक है, करुणा सिंधु बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा सिंधु का नाम भगवान के गुणों से जोड़ा गया है, लेकिन मेरा नाम बादल का नाम जो है ना, वो भगवान के तन भगवान के शरीर से जोड़कर लोग बुलाएंगे. भगवान को घनश्याम बोलेंगे, हैं नाम से पुकारेंगे. इस तरह दोनों आपस में बातचीत करने लगे इस तरह. और जब वसुदेव को भगवान कृष्ण ने देखा, बोला कृष्ण ने, वसुदेव मुझे लेके जाओ गोकुल में. आदेश तो दे दिया वसुदेव को, लेकिन वसुदेव के पास उनके हाथ में जंजीरें थी, पांव में जंजीर थे, कैसे उठा पाएंगे कृष्ण को. लेकिन उन्होंने एक क्षण के लिए भी हिचकिचाया नहीं, तुरंत कृष्ण को पकड़ा अपने हाथ में, ऐसे उठाया, जंजीरें टूट गए, पांव के जंजीरें भी टूट गई, दरवाजा खुल गया, सब वॉचमैन सो गए, निकट दो शेर भी थे वो भी सो गए, कोई डिस्टर्बेंस करने वाले नहीं थे. रात का अंधेरा था 12 बजे का, और अंधकार जो था जेल खाने में वो निकल गया. और वसुदेव बाहर जब निकले, सब लोग बारिश को देखकर अपने घर घर के खिड़की दरवाजा सब बंद करके सोने के लिए चले गए. जब वसुदेव ऐसे आगे लेकर गए आनंद शेष आकर सेवा की, यमुना ने देखा वसुदेव आ रहे हैं मेरे ही स्वामी कृष्ण को लेते हुए. अरे समुद्र ने भी मार्ग देने के लिए तयार हो गया रामचंद्र जी को, मैं तो साधारण नदी हूँ, मैं मार्ग क्यों नहीं दूंगी. इस तरह सोचकर यमुना ने मार्ग दिया पार करके जाने के लिए वसुदेव को. इस तरह वसुदेव कृष्ण को उठाकर एक टोकरी में उठाते हुए जा पहुँचे गोकुल में, जाकर एक्सचेंज किया कृष्ण को योगमाया देवी से. और खास करके भगवान अपने ही स्वेच्छा से वृंदावन जा पहुँचे, जिधर यशोदा और नंद महाराज को अपने लीला चेष्टाओं को प्रकट करने के लिए भगवान गोकुल में जाकर वसन करने लगे. इस तरह हम लोग जन्माष्टमी के समय अनेक विषयों के बारे में हम स्मरण कर सकते हैं. एक चीज़ है वसुदेव की सहिष्णुता, और वसुदेव और देवकी की तपस्या उसके बारे में सोच सकते हैं, और कंस की क्रूरता हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और भगवान और भक्तों के बीच में दिव्य संबंध, जैसे देवकी वसुदेव को कृष्ण के साथ संबंध, मधुर संबंध, उसके बारे में पढ़ सकते हैं. और जब कृष्ण अवतरित होते हैं कैसे वृंदावन जैसे मनोरम वातावरण छा जाता है, प्रकृति में सुंदरता आ जाती है, जैसे सब दिशाओं में शुभ वातावरण फैल जाता है. इस तरह हम देख सकते हैं कि जब कृष्ण आते हैं अपने साथ साथ आनंद को भी लेके आते हैं, क्योंकि खुद ही वो आनंद है, आनंद को फैलाते हैं. इसलिए एक गीत गाकर हम प्रवचन को विराम देंगे.
नंद के आनंद वागो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद वागो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।
कृष्ण के उपस्थिति में नंद बाबा ने क्या किया, सब लोगों को हाथी घोड़ी और भी बहुत कुछ सोना चांदी इत्यादि को दान में दिया।
हाथी दीनी घोड़ी दीनी और दीनी पाल के, हाथी दीनी बाबाओं को हाथी घोड़ी बाबाओं को पाल के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।